فصل القياس إما برهاني يتألف من اليقينيات وأصولها الأوليات والمشاهدات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات والفطريات ثم إن كان الأوسط مع عليته للنسبة في الذهن علة لها في الواقع فلمي وإلا فإني. گزشتہ اسباق کے اندر حجت کی بحث چل رہی تھی اور گزشتہ سبق میں آپ نے حجت کی دو قسمیں استقراء اور تمثیل کے بارے میں پڑھا. مصنف نے آپ کو بتلایا کہ استقراء وہ جزیات کو تلاش کرنا، جزیات کی تحقیق کرنا، جزیات کی جستجو کرنا، لِإِثْبَاتِ حُکْمٍ كُلِّيٍّ، تاکہ ان کے ذریعے ایک حکم کلی کو ثابت کیا جائے. جیسے اس کی مثال انہوں نے ذکر کی تھی کہ ہم نے حیوانات میں اکثر کے اندر تحقیق کی، جو حیوانات ہمیں ملے ہم نے دیکھا کہ وہ سب کھاتے اور چباتے وقت اپنا نچلا جبڑا ہلاتے ہیں، تو اس سے ہم نے ایک کلی حکم لگا دیا کہ تمام حیوانات کوئی چیز کھاتے یا چباتے وقت اپنا نچلا جبڑا ہلاتے ہیں. تو دیکھو، یہ جزیات کا تصفح کیا، ان کی تحقیق کی، ان کی تلاش کی، اور ان کے ذریعے پھر ایک کلی حکم لگا دیا. تمام افراد کی تو تحقیق نہیں کی، لیکن اکثر جو سامنے آئے، جو ملے، ان کی تحقیق کے بعد ایک کلی حکم لگا دیا. اس کو کہتے ہیں استقراء. اور دوسرا جو ہے تمثیل، جو ہے وہ مشارکت کو بیان کرنا ایک جزی کی دوسری جزی کے ساتھ، کہ ایک جزی دوسری جزی کے ساتھ شریک ہے حکم کی علت میں، تاکہ اس حکم کو دوسری جزی کے اندر بھی ثابت کیا جائے. جیسے شراب جو ہے اس کا حکم حرام ہونا ہے، اور اس کی علت جو ہے اس کا نشہ آور ہونا. یہی علت ہمیں کسی دوسرے مشروب میں بھی ملتی ہے، تو اس پر بھی یہی حرام ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ مشروب بھی شراب کے ساتھ شریک ہے حکم کی علت، یعنی نشہ آور ہونے میں. لہذا اس پر بھی وہی حکم لگنا چاہیے جو شراب پر لگا تھا، اور شراب پر تو حرام ہونے کا حکم لگا تھا، لہذا اس پر بھی حرام ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا. تو اس پر شارح نے پھر اعتراض کیا تھا کہ استقراء اور تمثیل یہ تو حجت کی اقسام ہیں، اور حجت کس کو کہتے تھے؟ وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجہول تصدیق تک پہنچا دیں. اور یہاں پر ماتن نے جو تعریف کی وہ مصدری معنی کے ساتھ کی. استقراء کا معنی کیا تصفح الجزئیات، تصفح تو مصدر ہے، اور اسی طرح تمثیل کا معنی کیا بیان المشارکت، اور بیان یہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے. اور پھر اس کی وجہ بھی ذکر کی انہوں نے کہ مصنف جو ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو حجت کی اس قسم کا نام استقراء اور دوسری قسم کا نام تمثیل رکھا گیا، یہ ارتجالاً یعنی بغیر کسی مناسبت کے یہ نام نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کی لغوی معنی کے ساتھ بھی مناسبت ہے. لغت میں بھی استقراء کا معنی ہے تلاش اور جستجو، اور منطق کے اندر بھی استقراء اس حجت کو کہتے ہیں جس میں تلاش اور جستجو ہوتی ہے. اسی طرح لغت کے اندر بھی تمثیل کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے مثل قرار دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دینا. اور منطق کے اندر بھی تمثیل جو ہے اس حجت کا نام ہے جس میں تمثیل ہوتی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے یا ان کی مشارکت کو بیان کیا جاتا ہے. تو مصنف نے معنی مصدری کے ساتھ جو ہے معنی بیان کر دیا استقراء کا بھی اور تمثیل کا بھی، لیکن اسی پر قیاس کرتے ہوئے استقراء اور تمثیل کا دوسرا معنی بھی آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے. مصنف نے استقراء کا کیا معنی کیا؟ جزیات کی جستجو کرنا تاکہ ایک حکم کلی کو ثابت کیا جائے. اسی سے معلوم ہو گیا، معلوم ہوا کہ وہ حجت جس کے اندر اس طرح کا استقراء ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ استقراء. اور اسی طرح تمثیل کے بارے میں مصنف نے کہا کہ تمثیل جو ہے وہ ایک جزی کی مشارکت کو بیان کرنا دوسری جزی کے ساتھ، हुक्म की इल्लत के अंदर, ताकि उसमें भी यही हुक्म साबित किया जाए। तो इससे खुद ही समझ में आ गया, मालूम हुआ हुज्जत की वो किस्म जिसके अंदर इस तरह की तमसील होगी उसको क्या कहेंगे, तमसील कहेंगे। तो मुसन्निफ की बातें बड़ी गहरी, उन्होंने तारीफ की तरफ भी इशारा कर दिया और ये भी बतला दिया कि इन दोनों के जो नाम हैं वो मनकूल की कबील से हैं, मुर्तजल की कबील से नहीं है। मनकूल वो जहां एक लफ्ज को नकल कर लिया जाए दूसरे खास माना की तरफ और दोनों में मुनासिबत मौजूद हो भाई, और मुर्तजल वो है जिसमें बगैर किसी मुनासिबत के किसी चीज का कोई नाम रख दिया जाए तो उस नाम के अंदर और उस चीज के दरमियान कोई मुनासिबत ना हो भाई। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद मुसन्निफ ने आखिर में आपको यह भी बतलाया था कि इल्लत को मालूम करने के बहुत से तरीके हैं, किसी वसफ को किसी हुक्म की इल्लत करार देना इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन इनमें सबसे उम्दा और आला दो तरीके हैं और उनको दौरान और तरदीद कहते हैं। दौरान का माना घूमना घूमना, और तरदीद आप जानते हैं कि आओ जो है हरफे तरदीद है, दो चीजों के दरमियान तरदीद के लिए आता है कि ये चीज है या ये चीज है। तो किसी वसफ को हुक्म की इल्लत करार देने के दो उम्दा तरीके हैं, एक को दौरान कहते हैं और एक को तरदीद। दौरान यह है कि ऐसा वसफ जो इल्लत बनने की सलाहियत भी रखता है और वह हुक्म उस इल्लत के साथ साथ घूमता है, यानी जहां वो वसफ होता है वो हुक्म भी होता है और जहां वसफ नहीं होता तो वो हुक्म भी नहीं होता। तो ये दौरान दलील है इस बात की कि यही वसफ इस हुक्म की इल्लत है, क्योंकि जहां ये वसफ होता है ये हुक्म भी होता है और जहां ये वसफ नहीं होता ये हुक्म भी नहीं होता। ये इस बात की दलील है कि यही वसफ इस हुक्म की इल्लत है। जैसे शराब के अंदर नशा है तो हराम है, नशा खत्म तो हुरमत भी खत्म हो गई। जैसे शराब से सिरका बना लिया जाए तो उसमें नशा खत्म हुआ, और नशा खत्म हुआ तो हुरमत भी खत्म हो गई, अब उस सिरके का इस्तेमाल जायज है भाई। तो यह है दौरान भाई। और दूसरा है तरदीद। तरदीद को सब्र व तकसीम या सिब्र व तकसीम, सिब्र और सब्र सीन के कसरा और फतहा दोनों के साथ ये लफ्ज दुरुस्त है भाई, इसी तरदीद को सिब्र व तकसीम भी कहते हैं भाई। सिब्र व तकसीम यह है कि किसी चीज के तमाम औसाफ जो हैं मालूम किए जाएं और उनमें तरदीद की जाए कि या तो ये वसफ इल्लत है या ये वाला वसफ इल्लत है या ये वाला वसफ इल्लत है या ये वाला वसफ इल्लत है, तो उनमें तरदीद की जाए और फिर उनमें से हर एक को बारी बारी जायजा लिया जाए, देखा जाए कि यह वसफ इल्लत बनने की सलाहियत रखता है या नहीं। मसलन शराब जो है उसके बहुत से औसाफ हैं, उनमें से एक वसफ है कि यह अंगूर से बनी है, एक वसफ यह है कि यह बहने वाली चीज है, एक वसफ यह है कि इसका मखसूस जायका है, इसी तरह इसका एक वसफ यह है कि इसकी मखसूस बू है, एक वसफ इसका यह है कि इसका मखसूस रंग है वगैरह। तो वो सारे औसाफ जो हैं अलग कर लेते हैं और उनमें तरदीद कर देते हैं कि या तो ये वसफ इल्लत है या ये वाला या ये वाला, और फिर उनमें से हर एक की इल्लियत को बातिल करते हुए बिल आखिर एक वसफ को उसकी इल्लत करार दे दिया जाए। मसलन शराब के अंदर ये सारे औसाफ हैं, इसी तरह एक वसफ है कि यह नशा आवर भी है, तो सब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा वसफ जो है हुरमत की इल्लत बनने की सलाहियत रखता है। सबसे पहला वसफ हमने देखा कि अंगूर से बनी है, लेकिन गौर किया कि अंगूर से तो और भी चीजें बनती हैं, वो हराम नहीं होती, जैसे अंगूर का शीरा है, अंगूर का रस है, अंगूर से रस निकाल लिया जाए वो हराम नहीं होता। मालूम हुआ अंगूर से बनी हुई है इसलिए शराब को हराम करार दिया गया है, यह इल्लत नहीं है इसके हराम होने की। फिर दूसरे वसफ को हमने देखा कि यह बहने वाली चीज है लिहाजा शायद इसलिए हराम हो, लेकिन हमने देखा कि और भी चीजें बहने वाली हैं, पानी है, दूध है और शहद है वगैरह और चीजें, तो वो हराम नहीं। मालूम हुआ शराब का बहने वाला होना यह इसके हराम होने की इल्लत नहीं है। इसी तरह इसका जायका है, मसलन कहते हैं ये शराब बड़ी कड़वी होती है तो शायद इस कड़वे होने की वजह से ये हराम है, लेकिन ये इल्लत तो और चीजों में भी मिलती है, और भी चीजें बड़ी कड़वी होती हैं लेकिन उनको शरीयत ने हराम करार नहीं दिया। इसी तरह इस शराब का एक मखसूस रंग है लेकिन इस जैसे और भी मशरूबात के रंग हैं, उनको शरीयत ने हराम करार नहीं दिया, मालूम हुआ ये वसब भी इल्लत बनने की सलाहियत नहीं रखते। इस तरह तमाम औसाफ की इल्लियत को बातिल करते हुए बिल आखिर शराब का नशा आवर होना, इस वसफ में हमने गौर किया तो मालूम हुआ हां यह वसफ जो है शराब के हराम होने की इल्लत है भाई, यह सलाहियत रखता है, तो बिल आखिर फिर इसको शराब के हराम होने की इल्लत करार दे दिया गया। अब आगे देखिए भाई, फसलुन القياس إما برهاني يتألف من اليقينيات وأصولها الأوليات والمشاهدات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات والفطريات। आज हम मादे कियास के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम कियास की सूरत के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें इन्होंने आपको बतलाया था कि कियास या तो इख्तिरानी होगा या इस्तिस्नाई होगा, और फिर इख्तिरानी है तो उसके अंदर या शक्ल अव्वल होगी या शक्ल सानी होगी या शक्ल सालिस होगी या शक्ल राबिया, ये सब कियास की सूरतें थीं। आज हम कियास के मादे के बारे में पढ़ेंगे। याद रखो, आप जब भी कोई चीज बनाते हैं तो दो बातें जरूर सोचते हैं, एक तो यह कि इसको किस चीज से बनाया जाए और दूसरा यह कि फिर इसको कैसी सूरत दी जाए। मसलन आप गिलास बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि मैं किस चीज से बनाऊं, शीशे का गिलास बनाऊं या स्टील का गिलास बनाऊं या मैं मिट्टी का गिलास बनाऊं या मैं पत्थर का गिलास बनाऊं, तो जिससे कोई चीज बनाई जाए उसको उस चीज का मादा कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा। और फिर दूसरी चीज आप यह सोचते हैं कि मैं इसकी शक्ल कैसी बनाऊंगा, किस तरह की इसकी सूरत बनाऊंगा। चुनांचे आप देखते हैं गिलासों की मुख्तलिफ किस्म की सूरतें होती हैं। तो लिहाजा जब भी कोई चीज आप बनाते हैं दो चीजों के बारे में जरूर सोचते हैं, नंबर एक किस चीज से बनाना है और कैसी सूरत देनी है, तो उसके मादे और उसकी सूरत के बारे में आप सोचते हैं। तो ये मादा, कभी कभार सूरत एक होती है मादा अलग अलग होता है, एक जैसी सूरत है लेकिन एक गिलास स्टील का है, दूसरा उसी सूरत में शीशे का गिलास है, तीसरा उसी सूरत में पत्थर का गिलास है वगैरह। तो देखो मादे सबके अलग अलग हैं लेकिन सूरत एक ही है, और कभी मादा एक होता है सूरतें अलग होती हैं। मसलन शीशे का एक गिलास है उसकी सूरत दूसरी, शीशे का दूसरा गिलास है उसकी सूरत दूसरी, शीशे का तीसरा गिलास है उसकी सूरत अलग किस्म की है। तो कभी मादा अलग होता है सूरतें एक जैसी, और कभी सूरतें अलग होती हैं और मादा एक जैसा। तो लिहाजा हर चीज के लिए मादा भी चाहिए और सूरत भी चाहिए। इसी तरह ये जो कलाम करते हैं, बात करते हैं, इसका भी एक मादा होता है और एक इसकी सूरत। मसलन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जैद खड़ा है, तो उसके लिए मैं अल्फाज का भी इंतखाब करूंगा और फिर उसकी एक सूरत भी बनाऊंगा। मसलन मैं कहता हूं कामा जैदुन, कामा जैद, तो कामा फेल आया और उसके बाद फिर मैं जैद को ले आया, तो ये एक कलाम की देखो मादा क्या है इसका, कामा फेल है और जैदुन उसका फाइल, और एक इसकी सूरत है कि कामा पहले है और जैदुन उसके बाद। दूसरी सूरत मादा यही रखें और सूरत बदल दें, जैदुन कामा, जैदुन को पहले ले आए और कामा को बाद में। देखो कामा जैदुन जब कहा था तो वो जुमला फेलिया था, और जैदुन कामा जब कहा तो ये जुमला इस्मिया बन गया। देखो सूरत ही बिल्कुल बदल गई, हालांकि मादा वही है। तो कलाम के लिए भी एक मादा चाहिए और एक इसकी सूरत, एक इसकी सूरत। इसी तरह कियास जो है इसका एक मादा है और एक इसकी सूरत है। सूरत तो आप पढ़ चुके कि कियास दो मुकदमात से मुरक्कब होता है और वो उनकी सूरत के एतबार से वो कियास इख्तिरानी कहलाएंगे अगर हरफे वाव आए बीच में, या कियास इस्तिस्नाई कहलाएंगे अगर दरमियान में हरफे इस्तिस्ना आ जाए, लाकिन ना इल्ला वगैरह कोई आ जाए, और फिर कियास इख्तिरानी के अंदर फिर इसकी सूरत जो है हद औसत किस किस जगह पर है पहले मुकदमे में और दूसरे मुकदमे में, इस एतबार से या वो शक्ल अव्वल होगी या सानी या सालिस या राबे होगी। तो यह है कियास की सूरतें भाई, कियास की सूरतें। और एक कियास का मादा है यानी जिन मुकदमात से आपने कियास को तरतीब दिया है। एक मुकदमा उला है, एक मुकदमा सानिया है, एक सुगरा है, एक कुबरा है भाई। ये सुगरा और कुबरा किस किस्म के हैं, इस एतबार से कियास की कई किस्में बन जाती हैं। तो कियास जो होता है वो दो कजियों से मुरक्कब होता है, और कजिया तस्दीक से बनता है, और तस्दीक इलम की एक किस्म है, और इलम की बुनियादी तौर पर दो ही किस्में हैं, या वो तस्वुर है या तस्दीक। आपकी जितनी मालूमात हैं आपके जहन में साल हा साल की, उन सारों को आप देखें तो वो दो ही किस्म की हैं, या वो तसव्वुर हैं या तस्दीक हैं। तो कजिया किसको कहते हैं, तस्दीक को कहते हैं, वो तस्दीक जिसमें सिदक और किजब दोनों एहतमाल हों, तसव्वुर और तस्दीक। लिहाजा आगे चूंकि शरा के अंदर तसव्वुर का भी जिक्र आएगा, लिहाजा अगरचे आप किताब के आगाज में तसव्वुर की तफसील पढ़ चुके हैं, मैं फिर बयान कर देता हूं। तो याद रखो, ये जो इलम है, इलम का दूसरा नाम इदराक है। इलम और इदराक का एक ही माना, इलम का माना भी जानना, इदराक का माना भी जानना। तो याद रखो, या तो इदराक में निस्बत होगी या निस्बत नहीं होगी। मसलन आपके जहन में सिर्फ जैद का तसव्वुर करते हैं तो देखो यहां कोई निस्बत नहीं, क्योंकि एक ही चीज है। निस्बत के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए जिनके दरमियान फिर निस्बत हो। तो सिर्फ अकेले जैद का तसव्वुर, यह भी क्या है, तसव्वुर। इसी तरह अमर का तसव्वुर, सिर्फ अमर का या सिर्फ किताब का या सिर्फ कलम का, तो यह एक चीज है, यहां निस्बत ही नहीं है, इसको भी तसव्वुर कहते हैं। बाज औकात एक से ज्यादा चीजें होती हैं लेकिन दरमियान में निस्बत नहीं होती, जैसे आपने जैद, अमर, बकर, खालिद, इनका तसव्वुर कर लिया। अब कई अफराद हैं लेकिन दरमियान में कोई निस्बत नहीं, यह भी तसव्वुर है। इसी तरह कभी तसव्वुर में निस्बत होती है लेकिन वह निस्बत ताम नहीं होती, गैर ताम होती है, जैसे मुरक्कब तौसीफी है और मुरक्कब इजाफी है। जैसे मैं कहता हूं रजुलुन शुजाउन, बहादुर आदमी, रजुलुन मौसूफ है और शुजाउन उसकी सिफत। तो अब ये दो चीजों के बारे में तसव्वुर किया आपने, एक रजुल और एक शुजा, और दोनों में निस्बत भी है कि शुजा क्या है, इस रजुल की सिफत है। या कभी मुजा मुजाफिले वाली निस्बत होती है, यानी गैर ताम, गुलाम जैदिन, इसमें गुलाम का भी तसव्वुर, जैद का भी तसव्वुर, और दोनों में निस्बत भी है कि यह गुलाम किसका है, जैद का है, तो यह निस्बत है लेकिन यह निस्बत ताम नहीं, यानी इसमें बात पूरी नहीं। गुलाम जैदिन सारा दिन भी किसी को कहते रहे, वो कहेगा भाई क्या माना आप, क्या कहना चाहते हैं, बात तो पूरी करें। तो गुलाम जैदिन या रजुलुन शुजाउन, ये मौसूफ सिफत या मुजाह मुजाफिले जो हैं, ये इनमें निस्बत तो होती है लेकिन निस्बत तकयीदी होती है, निस्बत ताम नहीं। तो ये भी तसव्वुर की किस्म। इसी तरह कभी निस्बत ताम होती है लेकिन इंशाई होती है, वो भी तसव्वुर है। जैसे आप किसी से कहते हैं ए ज़रीब अमरन, अमर की पिटाई करो। अब देखो इसमें बात पूरी है, निस्बत ताम है, उसको समझ में आ गई बात कि आप उसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इंशा है क्योंकि अमर है, और अमर किसकी किस्म, इंशा, और इंशा याद रखो तसव्वुर की किस्म है। तो निस्बत ताम हो लेकिन इंशाई हो तो वो भी तसव्वुर। इसी तरह निस्बत ताम होगी और इंशाई नहीं होगी, खबरी होगी, लेकिन उसके अंदर फिर बाज़ औकात दोनों जानिबें बराबर होती हैं। आपके जहन में मसलन बात आई कि जैद आलिम है, जैद आलिम है, या किसी ने आपको बताया कि जैद आलिम है, तो अब आपके जहन में आता है कभी कि जैद आलिम है, कभी आपके जहन में आता है कि जैद आलिम नहीं है, शायद वह आलिम ना हो भाई। तो अगर ये दोनों जानिबें बराबर हों, होना भी और न होना भी, तो फिर इसको शक कहते हैं मंतिक की इस्तिलाह में। तो इसमें दोनों जानिबें बराबर होती हैं, यानी जितना ख्याल एक चीज के होने का होता है उतना ही ख्याल उसके न होने का भी हो तो इसको क्या कहते हैं, शक कहते हैं। मसलन किसी ने आपको बताया जैद आ गया है, आप लोग इंतजार में हैं, किसने कहा जैद आ गया, लेकिन अब आपको उस पर पूरा यकीन नहीं, तो कभी तो जहन में आता है कि वाकई जैद आ गया होगा, और कभी जहन में आता है कि हो सकता है जैद ना आया हो, इसने वैसे ही कह दिया हो। तो देखो दोनों तरफ का ख्याल जहन में आता है और किसी एक जानिब का ख्याल भी ज्यादा नहीं है, बराबर है, यानी 50% ख्याल आने का है तो 50% ही न आने का है, इसको कहते हैं शक भाई, जिसमें दोनों जानिबें क्या होती हैं बराबर, जितना ख्याल होने का उतना ही ख्याल न होने का। और अगर एक जानिब का ख्याल ज्यादा हो तो उसको जन कहते हैं, जन्नुन तो आज़वा है भाई, जन्नुन, यानी मसलन किसी ने आपको बताया जैद आ गया है, अब आपके जहन में ज्यादा ख्याल यही है कि जैद आ गया है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल कभी आ जाता है कि हो सकता है ना आया हो भाई, तो इसमें देखो एक जानिब का ख्याल ज्यादा और एक जानिब का ख्याल कम, जिस जानिब का ख्याल ज्यादा है इसको क्या कहते हैं, जन, और जिस जानिब का ख्याल कम है उसको वहम कहते हैं। और याद रखना ये जो जन है ये तस्दीक की किस्म है और वहम जो है वो तसव्वुर की किस्म है, इसी तरह शक जो है वो भी तसव्वुर की किस्म है, और इसी तरह एक तख्यील है भाई, तखील जिसमें कोई बात हमारे जहन में आती है और उसके मानने या ना मानने की तरफ जहन जाता ही नहीं, जहन में ख्याल सा आता है और फिर निकल जाता है, तो ये ख्याली बातें तखील के अंदर दाखिल हैं। और याद रखना ये तखील भी, ये तखील भी तसव्वुर की किस्म है। तो तसव्वुर की गोया पांच किस्में हो गई, एक किस्म क्या कि एक ही चीज का तसव्वुर हो, निस्बत है ही नहीं सिरे से, दूसरी सूरत कई चीजों का तसव्वुर है लेकिन दरमियान में कोई निस्बत नहीं, यह भी तसव्वुर है, तीसरी सूरत एक से ज्यादा चीजों का तसव्वुर है और दरमियान में निस्बत भी है लेकिन निस्बत गैर ताम है, यह भी क्या है, तसव्वुर, चौथी सूरत के कई चीजें हैं उनके दरमियान निस्बत भी है लेकिन निस्बत इंशाई है, यह भी क्या है, तसव्वुर, पांचवीं सूरत की निस्बत ताम भी है खबरी भी है लेकिन वो या शक है या वहम है या तखील है, ये सब भी किस कबील से हैं, तसव्वुर की कबील से हैं, तसव्वुर की कबील से। और इसके अलावा जो सूरतें हैं वो है तस्दीक की भाई, तस्दीक में एक चीज के लिए दूसरी चीज का सबूत होता है या एक चीज से दूसरी चीज की नफी होती है, और इसमें एतिकाद जरूरी होता है कि आप मान लें या आपका गालिब गुमान हो, तवज्जो है, तस्दीक में यह जरूरी है कि आप एक बात को मान लें, तस्लीम कर लें, या आपका गालिब गुमान हो, गालिब गुमान भी मानने जैसा ही है कि गोया आप मान गए हैं एक बात को, अगरचे थोड़ा बहुत दूसरी जानिब का भी ख्याल आ जाता है लेकिन मान गए हैं आप इस बात को, तो तस्दीक के अंदर मानना और एतिकाद जरूरी होता है, अगर मानना और एतिकाद करना इसमें ना हो तो फिर यह तसव्वुर में दाखिल हो जाएगा। और याद रखना फिर ये जो तस्दीक है इसकी चार किस्में हैं, एक है जन, एक है तकलीद, काफ दो नुक्तों वाला है तकलीद, और एक है यकीन, और एक का नाम है जहले मुरक्कब। कितनी किस्में हैं, चार, जन, तकलीद, यकीन और जहले मुरक्कब, फिर दोहराएं भाई, जन, तकलीद, यकीन और जहले मुरक्कब। जन वो है जिसमें जानिब मुखालिफ का थोड़ा बहुत ख्याल आता है, जानिब मुखालिफ का थोड़ा बहुत ख्याल आता है। तकलीद वो तस्दीक है जिसमें जानिब मुखालिफ का जरा भी ख्याल नहीं आता, किसी ने आपको बतलाया कि जैद आ गया है और आपने यकीन कर लिया, मान लिया कि हां जैद आ गया है, भाई आपको किसी मुअतमद आदमी ने बताया, आपको यकीन है कि यह आदमी झूठ नहीं बोलता, उसने बताया कि जैद आ गया है तो आप मान गए भाई कि हां जैद आ गया है, अब जैद के न आने का ख्याल भी दिल में नहीं आता तो इसको कहते हैं तकलीद भाई, क्या कहते हैं, तकलीद कहते हैं, तकलीद कहते हैं। और देखो एक वो तकलीद है जो हम अइमा की करते हैं, अइमा फुकाहा की भाई, ये वो तकलीद मुराद नहीं है भाई, यहां तकलीद है किसी ने कोई बात बताई और आपने उसको मान लिया, उसकी तकलीद करते हुए, उसका इत्तेबा करते हुए आपने क्या कर लिया, बात को मान लिया, ये है तकलीद भाई। बाकी वो फुकाहा की तकलीद नहीं भाई, वो इस कबील से नहीं है भाई, वो यकीन के दर्जे में है। तो ये जो तकलीद है इसके अंदर जानिब मुखालिफ का ख्याल जरा भी नहीं आता, हां अलबत्ता यह है कि यह तशकीक मुशक्किक से जायल हो जाती है। मुशक्किक शक डालने वाला, तशकीक शक डालना, शक का युशक्किको तशकीकन फहुआ मुशक्किकुन, शक डालने वाला जो है वह है मुशक्किक, और यह जो शक डालने का फेल है यह शक डालना यह है तशकीक भाई। तो तकलीद के अंदर आप बात मान लेते हैं यकीन, बात मान लेते हैं यकीन कर लेते हैं, और इसमें जानिब मुखालिफ का जरा भी ख्याल नहीं आता। आपने मान लिया कि जैद आ गया है, न आने का ख्याल भी दिल में नहीं, लेकिन कोई आकर दो चार बातें ऐसी करता है कि आप शक में पड़ जाते हैं कि शायद जैद नहीं आया। तो मालूम हुआ आपका इलम, आपका एतकाद जो था वो पुख्ता नहीं था, साबित नहीं था, तशकीक मुशक्किक से जायल हो गया। आपने तो मान लिया था जैद आ गया है, लेकिन एक और आदमी आया, उसने दो चार ऐसी बातें की कि जिससे आप भी शक में पड़ गए कि शायद जैद वाकई नहीं आया भाई। तो देखा तशकीक मुशक्किक से वो आपका इलम जायल हो गया या नहीं? आपको तो यकीन था जैद आ गया, लेकिन आकर उसने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है जैद आ गया हो भाई, कोई दो तीन चार बात ऐसी बातें की कि आपको भी शक पड़ गया कि वाकई शायद जैद नहीं आया भाई। तो ये जो तकलीद है ये तशकीक मुशक्किक से जायल हो जाती है, जबकि इससे आला और ऊंचा दर्जा यह है कि आप किसी बात को मान लेते हैं, उसका एतकाद कर लेते हैं, और आप उस पर इतने पुख्ता होते हैं, इतना आपको यकीन हो जाता है कि अब कोई हजार शक डाले, आप शक के जरिए आपके उस इलम को खत्म नहीं कर सकता। मसलन जैसे हम सब मानते हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, अब कोई हजार शक डाले इससे हमारे इस इलम को वो कमजोर नहीं कर सकता भाई। तो इसको यकीन कहते हैं। तो यकीन वो है जिसमें इंसान एतकाद कर लेता है, जानिब मुखालिफ का जरा भी ख्याल नहीं आता, और यह साबित होता है, यानी उसके नजदीक सुनने वाले के जिसके जहन में यह बात है उसके नजदीक साबित होता है, यानी इसमें किसी किस्म का शक और शुबा है ही नहीं। कोई हजार शक भी डाले इस वो उस इलम को खत्म नहीं कर सकता, उसमें शक नहीं डाल सकता भाई। इसको कहते हैं यकीन, और इसमें यह जरूरी है कि यह वाकई के भी मुताबिक हो। हम कहते हैं अल्लाह एक है और यह वाकई के भी मुताबिक है, हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और यह वाकई के भी मुताबिक है, तो इसको यकीन कहते हैं। और अगर ऐसा ही एक चीज का कोई इंसान एतकाद कर ले जो तशकीक मुशक्किक से जायल नहीं होता लेकिन वो वाकई के मुताबिक नहीं है, तो उसको जहले मुरक्कब कहते हैं। क्या कहते हैं? जहले मुरक्कब कहते हैं। जैसे कुफार का ये अकीदा है कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है भाई, हम तो कहते हैं असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी और कयामत के दिन हिसाब किताब होगा और फिर उसके बाद जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा और वो जिंदगी लामुतनाही है, वो खत्म होने वाली नहीं है। तो देखो अब कुफार इस बात को नहीं मानते और इतने पुख्ता होते हैं इस पर कि आप उनको हजार दलीलें दे दें वो फिर भी नहीं मानते भाई, इल्ला ये कि किसी को अल्लाह हिदायत दे दें भाई। तो देखो उनका एक एतकाद है, एतकाद क्या कि मरने के बाद जिंदगी नहीं, और जानिब मुखालिफ का जरा भी ख्याल नहीं आता यहां कि हो सकता है हम जिंदा हो जाए, और इतने पुख्ता होते हैं कि तशकीक मुशक्किक से उनका यह एतकाद खत्म नहीं होता, तो इसको जहले मुरक्कब कहते हैं। जहले मुरक्कब है, यह दुगनी जहालत है भाई, एक तो एतकाद ऐसा जो वाकई के मुताबिक नहीं है, और दूसरा इतना उस पर जम जाना कि किसी के समझाने से भी ना समझना भाई, इसकी इसलाह नहीं हो सकती। याद रखो एक इंसान ना जानता हो लेकिन उसको पता है मैं नहीं जानता, उसकी इसलाह हो जाएगी क्योंकि उसके अपने जहन में क्या है, मैं पूरी तरह एक बात को नहीं जानता। और एक शख्स जो नहीं जानता लेकिन उसका एतकाद यह है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, तो इसकी इसलाह बहुत मुश्किल है भाई। तो तस्दीक की कितनी किस्में हो गई? चार किस्में हो गई, जन, तकलीद, यकीन और जहले मुरक्कब। जन में जानिब मुखालिफ का थोड़ा बहुत ख्याल आता है, तकलीद में जानिब मुखालिफ का ख्याल नहीं आता, और अलबत्ता ये तशकीक मुशक्किक से जायल हो जाता है। और यकीन, यकीन किसको कहते हैं? जिसमें जानिब मुखालिफ का ख्याल नहीं आता और वो साबित होती है यानी पुख्ता इलम होता है उस पर, तशकीक मुशक्किक से जायल नहीं होता और नीज वाकई के भी मुताबिक होता है। जबकि जहल मुरक्कब उसमें भी जानेब मुखालिफ का जरा भी ख्याल नहीं आता, इंसान उसको मान लेता है और उसके नजदीक वो पुख्ता इलम होता है, साबित होता है, उसमें तशकीक मुशक्किक से जायल नहीं होता, अलबत्ता वो वाकई के मुताबिक नहीं होता। तो देखा ये मुख्तलिफ दर्जे हैं तस्दीक के। एक तस्दीक क्या? जन, जिसमें जानेब मुखालिफ का भी ख्याल आता है। एक तस्दीक किस किस्म की? तकलीद है, जो जिसमें जानेब मुखालिफ का ख्याल तो नहीं आता लेकिन तशकीक मुशक्किक से जायल हो जाती है। जाहिर सी बात है ये तस्दीक उस तस्दीक से कवि है। एक तस्दीक वो जन की कबील से है जिसमें जानेब मुखालिफ का भी ख्याल आ रहा है, और एक ये तकलीद है जिसमें जानेब मुखालिफ का ख्याल नहीं आता। जाहिर सी बात है ये उसके मुकाबले में कवी है ये तस्दीक। और एक इससे भी आला दर्जा है जिसको यकीन कहते हैं, जिसमें इंसान एक चीज का एतिकाद कर लेता है और इसकी नकीज का जहन में ख्याल भी नहीं आता और नीज उसके नजदीक यह साबित होती है यानी पुख्ता होती है और तशकीक मुशक्किक से यह जायल नहीं होती और वाकई के भी मुताबिक होती है, इसको यकीन कहते हैं। तो इनमें सबसे आला दर्जा यकीन का है, उससे अदना दर्जा तकलीद का है, उससे अदना दर्जा जन का है, और जहले मुरक्कब वो तो गलत है, वो मुताबिक वाकई नहीं, उसका दर्जा सबसे नीचे है। तो बहरहाल ये जो जन तकलीद और यकीन मुख्तलिफ किस्म के मुकदमे तरतीब देकर आप कयास बनाते हैं, और ये जिन मुकदमात से कयास बनता है वो कयास का मादा कहलाते हैं, वो कयास का मादा कहलाते हैं। और जितने कवि ये मुकदमात होंगे उसी किस्म का कवि कयास भी होगा। अगर आपका कयास यकीनियात से मुरक्कब है वो सबसे आला दर्जा है, और इससे जो नतीजा आएगा वो भी बड़ा यकीनी होगा। और अगर आपका कयास जो है वो तकलीद जैसे तस्दीकात से मुरक्कब है तो जाहिर सी बात है कि जो नतीजा आएगा वो भी इसी किस्म का होगा, तशकीक मुशक्किक से वो भी जायल होगा। और जो कयास आपका जन से मुरक्कब हो जाहिर सी बात है उसमें वो इतना यकीनी नहीं, उसमें जानेब मुखालिफ का भी ख्याल, तो उससे जो नतीजा आएगा वो भी जन्नी होगा भाई, वो यकीनी नहीं होगा। तो कयास जिस किस्म के कजियों से मुरक्कब हो वो उसका मादा कहलाते हैं, और जिस दर्जे के ये कजिए और मुकदमे होंगे उसी दर्जे का कयास होगा। और इनमें सबसे आला दर्जा कयास का कि जिसके मुकदमात यकीनी हो, और उसको बुरहान कहते हैं। क्या कहते हैं? बुरहान कहते हैं, या कयास बुरहानी कहते हैं भाई। अब देखिए भाई किताब पर, फसलुन अल कियासु इम्मा बुरहानी यूं यतअल्लफु मिनल यकीनियाति, कि कियास या तो वो बुरहानी होगा जो मुरक्कब होगा यकीनियात से, यतअल्लफु ऐ यतरक्कबु जो मुरक्कब होगा यकीनियात से, व उसूलुहल अव्वलियात वल मुशाहदात वल तजरीबियात वल हदसियात वल मुतवातिरात वल फितरियात। और उसूल यकीनियात जो हैं यानी बुनियादी यकीनी बातें जो हैं वो छह हैं भाई, अव्वलियात, मुशाहदात, तजरीबियात, हदसियात, मुतवातिरात और फितरियात। भाई इनको अच्छी तरह समझ लें भाई, ये मादा कयास की बहस है और ये बड़ी कीमती बहस है, शारह भी इसमें जिक्र करेंगे, इसी तरह साहिब मिरकात भी जिक्र करते हैं कि मुतकद्दिमीन उलमा जो हैं वो इस मादा कयास को बड़ी अहमियत देते थे, मादा कयास को बड़ी अहमियत देते थे, क्योंकि इसी से आपने कयास बनाना है, तो जिस दर्जे की तस्दीकात होंगी उसी दर्जे का कयास भी होगा। अगर तस्दीकात यकीन के दर्जे की हैं तो जो नतीजा आएगा वो भी क्या होगा? यकीनी होगा। तो वो इस कयास के मादे को बड़ी अहमियत देते थे, जैसे शेख बुआली सीना वगैरह, और बहुत इस पर जोर देते थे, लेकिन हमारे मुताखिरीन ने इसकी तरफ तवज्जो कम कर दी। और बाकी आगे قضیائے شرطیہ کی تفصیل کے اندر چلے گئے، اور وہ باتیں جو فائدہ دینے والی نہیں ان میں حد سے زیادہ طوالت سے کام لیا، خوب تفصیل سے بیان کیا، حالانکہ ان کا فائدہ تھوڑا تھا. اور یہ مادہ قیاس یہ سب سے قیمتی بحث تھی، اس کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں کی. کہتے ہیں معلوم نہیں کیوں انہوں نے ایسا کیا، جو چیز بے فائدہ تھی یا کم فائدے والی تھی اس کی طرف اپنی ساری توجہ مرکوز کر دی، اور جو چیز سب سے قیمتی اور اعلیٰ تھی اس کو تھوڑی توجہ دی، اس کی طرف بے توجہ ہی کی اور لاپرواہی برتی. تو یاد رکھو یہ مادہ قیاس جو ہے یہ بڑی قیمتی بحث ہے، آپ کو اس کی ضرورت قدم قدم پر پیش آئے گی، مختلف مواقع پر کس قسم کا قیاس چاہیے، کس طرح کی بات کرنی ہے، اور کون سا قیاس ہوگا تو جو نتیجہ آئے گا وہ بڑا پختہ مضبوط اور یقینی ہوگا. تو اس کا سارا دار و مدار اس بحث پر ہے، تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے بھائی. ان میں سب سے پہلے جو ہے اولیات کو ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ اصول حل اولیات، اصول یقینیات. بھائی یہ چھ چیزیں ہیں، اولیات، مشاہدات، تجربیات، حدسیات، متواترات اور فطریات. بھائی فطریات یاد رکھو یہ سب بدیہیات ہیں. بھائی یہ سب کیا ہیں؟ بدیہیات جو ہیں یہ چھ قسم کے ہیں بھائی، یہ اولیات، مشاہدات، تجربیات، حدسیات، متواترات اور فطریات، یہ سب کیا ہیں؟ بدیہی. یعنی یہ چھ قسمیں ہیں بدیہی کی، موٹی موٹی اور بنیادی قسمیں. بھائی ان میں سے پہلی قسم جو ہے اولیات ہے. بھائی اولیات، بدیہی اور نظری تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بدیہی وہ ہے جس میں ذرا بھی غور و فکر نہ کرنا پڑتا ہو، اور نظری وہ چیزیں ہیں جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے. بدیہی چیزیں جو ہیں اس کو ہر ایک جانتا ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کے لیے بدیہی ہوتی ہیں، سب کے لیے بدیہی ہوتی ہیں بھائی. اور نظری وہ جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہو. اور پھر یاد رکھنا یہ بدیہی اور نظری بھی لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے ایک چیز بدیہی ہوگی، اللہ نے تیز ذہن دیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے نظری ہو، ان کو غور و فکر کرنا پڑتا ہو، پھر ہی ان کو بات سمجھ میں آتی ہو. بھائی تو یہ بدیہی اور نظری کیا ہے؟ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. اور بدیہی وہ ہے جس میں ذرا بھی غور و فکر نہ کرنا پڑے، ذرا بھی دماغ نہ خرچ کرنا پڑے، بالکل واضح اور ظاہر ہو. بھائی جیسے دیکھو بکری چھوٹی ہے اور گائے بڑی ہے، اس بات کو بچہ بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، اس میں ذرا بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا اور کوئی مثال دو بدیہیات کی. ہاں سورج نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، دن ہوتا ہے، دیکھو ایک بدیہی بات ہے، بچہ بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے. گلاب کے پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے. گلاب کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، بچہ بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے. تو بدیہی باتیں وہ ہوتی ہیں جن میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، ہر ایک اس کو جانتا ہے. بھائی تو اب یہ بدیہیات جو ہیں وہ چھ قسم کی ہیں بنیادی بدیہیات. بھائی ان میں سے اولیات جو ہیں وہ قضایائے بدیہیہ ہیں جن میں طرفین کا تصور اور نسبت کا تصور کافی ہے ان پر یقین کرنے کے لیے. مثلا میں کہتا ہوں کہ کل جو ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے، کل جز سے بڑا ہوتا ہے. دیکھو آپ کے ذہن نے کل کا تصور کیا، کل کسے کہتے ہیں؟ جز کا تصور کیا، اور پھر بڑے ہونے کی نسبت کو دیکھا کہ کل کی طرف کیا نسبت کی جا رہی ہے، کہ وہ بڑا ہوتا ہے. بس تو طرفین کا تصور کیا اور نسبت کا تصور کیا، اور آپ کے ذہن نے یقین کر لیا کہ ایسا ہی ہے بھائی، کہ ایسا ہی ہے بھائی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں اس کو، وہ کوئی دلیل نہیں مانگے گا بھائی، فوراً آپ کا ذہن اس کو تسلیم کر لیتا ہے. دلیل یہاں ہوگی لیکن دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے بھائی، ضرورت ہی نہیں ہے. مثلاً کیا کہا کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں کل کا تصور آیا، جز کا تصور آیا، اور پھر کہ بڑے ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ کل کی طرف، کہ وہ جز سے بڑا ہوتا ہے. فوراً آپ کے ذہن نے مان لیا اور یقین کر لیا، ذرا بھی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آئی بھائی. تو ان کو اولیات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اولیات کہتے ہیں، اولیات. تو اس میں ذرا بھی سوچنا نہیں پڑتا. یا جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ 500 کا نوٹ 100 کے نوٹ سے بڑا ہوتا ہے، देखो उसके जहन में 500 आया, फिर 100 आया, और फिर 7 के बड़े होने की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? 500 की तरफ। उसने फौरन मान लिया, यकीन कर लिया, उसने फौरन यह एतकाद कर लिया कि हां 500 का नोट 100 से बड़ा होता है। तो इसमें जरा भी गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहन फौरन इसको तस्लीम कर लेता है। सिर्फ किन चीजों का तसव्वुर करता है? एक कजिया उसके सामने आपने पेश किया या उसने खुद तसव्वुर किया है कि कुल जुज से बड़ा होता है, या 500 का नोट 100 से बड़ा होता है, एक चीज का भी तसव्वुर करेगा, दूसरी चीज का भी तसव्वुर करेगा, और उन दोनों के दरमियान निस्बत का भी तसव्वुर करेगा, और फिर यकीन कर लेगा जहन के हां वाकई ऐसा है, वाकई ऐसा है। याद किसी से आप कहते हैं भाई 100 शेर 10 शेर से ज्यादा होते हैं, भाई देखा फौरन उसके जहन ने मान लिया, किसी दलील देने की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं कहेगा दलील दो भाई, क्या दलील है 100 किलो वाला ज्यादा, 100 किलो ज्यादा है 10 किलो के मुकाबले में, फौरन जहन तस्लीम कर लेता है। तो इनको अव्वलियात कहते हैं, अव्वलियात। जबकि बाकी जो 5 किस्में हैं, याद रखो इन सब में वास्ते की जरूरत पड़ेगी, अव्वलियात में किसी वास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। जहन बस तरफेन का तसव्वुर करता है और उनके दरमियान निस्बत का तवज्जो है, किस किस का तसव्वुर करता है, मौजू महमूल तरफेन का तसव्वुर करेगा, फिर उनमें निस्बत का तसव्वुर करेगा, उसके बाद जहन फौरन मान लेता है, किसी दलील की तरफ जाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती भाई। अलबत्ता कोई शख्स कमजोर जहन वाला है, बहुत ही कमजोर जहन वाला है, या कोई बच्चा बहुत छोटा है, हो सकता है उसको गौर व फिक्र करना पड़े, उसको थोड़ा सा उसमें, और जिसका जहन बहुत ही कमजोर है या छोटा बच्चा है तो उसको हो सकता है गौर करना पड़ जाए, वरना आम आदमी को इसमें गौर की जरूरत नहीं पड़ती भाई। मसलन किसी छोटे बच्चे से आप पूछें, बताओ भाई मोर बड़ा है या उसकी दुम बड़ी है भाई? अब हो सकता है बच्चा कम उम्र है, वो कह दे कि जी दुम बड़ी होती है उसकी, हालांकि मोर तो दुम समेत पूरे जिस्म का नाम है, तो जाहिर सी बात है मोर के अंदर दुम भी आ गई और बाकी जिस्म भी आ गया, वो बड़ा है कि सिर्फ एक तरफ सिर्फ उसकी दुम हो गई। तो लिहाजा ये जो अव्वलियात हैं इनमें जरा भी गौर फिक्र नहीं करना पड़ता, बस मौजू महमूल का ख्याल दिल में आता है, उनमें निस्बत का ख्याल आता है और फौरन जो है जहन उसको कबूल कर लेता है, मान लेता है, उसका एतकाद कर लेता है, उस पर यकीन कर लेता है। जबकि बाकी जो 5 किस्में हैं, मुशाहदात, तजरीबियात, हदसियात, मुतवातिरात और फितरियात, ये सब भी बदीहियात हैं, लेकिन इन सब में कोई ना कोई वास्ता आएगा। जैसे मुशाहदात वो चीजें जिनका हम मुशाहदा करते हैं भाई, जिनका क्या करते हैं, मुशाहदा करते हैं, और जो हमें हवासे खमसा जाहिरा या हवासे खमसा बातिना के जरिए हासिल हों भाई, हवासे खमसा जाहिरा के जरिए हासिल हों तो उनको महसूसात कहते हैं, हवासे खमसा बातिना के जरिए हासिल हों तो उनको विजदानियात कहते हैं। क्या कहते हैं? विजदानियात। मुशाहदात की बात आ गई भाई, तफसील याद रखो, तफसील याद रखो, याद रखो, ये नफ्स जो है ना, नफ्स यानी रूह मुद्रिक है, ये चीजों का इदराक करता है, यानी चीजों को का इलम हासिल होता है, इसको इलम होता है, और इलम हासिल करने के लिए इसको अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म के आलात दिए जिनके जरिए वो इलम हासिल करता है ये नफ्स भाई, और इसको अल्लाह ने अकल नसीब फरमाई, अकल के जरिए ये चीजों का इदराक करता है। लेकिन फलासफा कहते हैं कि अकल जो है ये मुद्रिक कुल्लियात है, अकल सिर्फ कुल्ली चीजों का इदराक करती है, जुजी चीजों का इदराक नहीं करती। ये जैद है या ये बकर है या ये खालिद है या ये बकरी है या ये गाय है, इन चीजों का इदराक अकल नहीं करती, अकल सिर्फ किसका इदराक करती है, कुल्लियात का। जबकि जैद, अमर, बकर, खालिद और या ये बकरी या ये भैंस, ये गाय, ये सारी चीजें क्या हैं, जुजियात हैं, और अकल जुजियात का इदराक नहीं कर सकती भाई, ये सिर्फ कुल्लियात का इदराक करती है, और इसको जुजियात का इदराक भी तो चाहिए, तो जुजियात के इदराक के लिए अल्लाह ने आगे अकल को हवासे खमसा बातिना दे दिए, हवासे खमसा बातिना दे दिए जिनके जरिए ये जुजियात का इदराक करती है। हवासे खमसा बातिना का बयान बड़ा लतीफ है भाई, बड़ा लतीफ है। हमारे उलमाए इस्लाम जो हैं, यानी मुतकल्लिमीन जो हैं वो हवासे खमसा बातिना का इनकार करते हैं, उसको तस्लीम नहीं करते कि हवासे खमसा बातिना कोई चीज नहीं है। वो कहते हैं अकल मुदरी के कुल्लियात भी है और मुदरी के जुजियात भी है। अकल ही क्या करती है, कुल्लियात का भी इदराक करती है और जुजियात का भी इदराक करती है, इसको किसी हवासे खमसा बातिना की जरूरत नहीं है। लेकिन फलासफा कहते हैं कि हवासे खमसा बातिना मौजूद हैं भाई, और उनके वास्ते से अकल जुजियात का इदराक करती है, और हवासे खमसा बातिना का बयान बड़ा लतीफ है। तो आम उलमा इस्लाम जो है हमारे, वो हवासे खमसा बातिना को नहीं मानते, लेकिन मुहक्किकीन उलमाए इस्लाम जो हैं वो इनको तस्लीम करते हैं, और इनके तस्लीम करने में इस्लाम पर कोई एतराज वारिद नहीं होता। तस्लीम क्यों नहीं किया जाए? अगर या तो इस्लाम पर एतराज पड़ता हो फिर तो बात बनती है कि आप उसको रद्द करें, और नीज ये कोई शरई बात भी नहीं है कि हवासे खमसा बातिना है या नहीं, ये कोई शरई बात नहीं। शरई उमूर में तो उलमाए इस्लाम की राय ठीक होगी, लेकिन ये तो सिर्फ एक अकली चीज है, और हो सकता है अकलियात में फलासफा की बात ठीक हो। तो मुहक्किकीन उलमाए इस्लाम वो इन हवासे खमसा बातिना को तस्लीम करते हैं, और इनका बयान बड़ा लतीफ है भाई। इससे अल्लाह की कुदरत की नैरंगियां सामने आती हैं कि अल्लाह ने कैसी कैसी कुव्वतें इंसान को नसीब फरमाई हैं भाई। और फिर हवासे खमसा बातिना को आगे अल्लाह ने हवासे खमसा जाहिरा नसीब फरमाए। हवासे खमसा जाहिरा, ये जो जाहिर हैं भाई, पांच कुव्वतें अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई हैं। एक देखने की कुव्वत है, कुव्वत बासिरा, ये अल्लाह ने आंखों में रखी, इसके जरिए हम चीजों को देखते हैं, कोई चीज छोटी है कोई बड़ी है, किसी का रंग कैसा है किसी का रंग कैसा है, कोई दरख्त है कोई पत्थर है कोई इंसान है कोई क्या चीज है, देखने के जरिए हमें इन सब चीजों का इलम होता है। तो ये क्या है, कुव्वत बासिरा, और ये देखने की कुव्वत अल्लाह ने आंखों में रखी है। इसी तरह अल्लाह ने एक सुनने की कुव्वत इंसान को नसीब फरमाई है, जिसके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म की आवाजों को सुनते हैं, और इसका नाम कुव्वत सामिया है, और ये कानों के अंदर अल्लाह ने रखी है। और एक कुव्वत शामह अल्लाह ने इंसान को नसीब फरमाई है, शम्मुन का माना है सूंघना, तो कुव्वत शामह ये नाक में अल्लाह ने रखी है, यानी सूंघने की ताकत, इसके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म की बू को सूंघते हैं, उसका पता चलता है हमें कि क्या चीज कौन सी खुशबू अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है भाई। इसी तरह एक कुव्वत जायका है जो अल्लाह ने जुबान में रखी है, इसके जरिए हम मुख्तलिफ चीजों के जायके को महसूस करते हैं भाई, जायकों को महसूस करते हैं। और एक कुव्वत लामिसा है जो पूरे बदन में फैली हुई है, इसके जरिए हम चीजों को छूकर पता लगाते हैं कि कोई चीज सख्त है या नरम है, खुश्क है या तर है, हमवार है या खुरदरी है भाई। तो ये कुव्वत लामिसा है भाई। तो ये पांच कुव्वतें अल्लाह ने इंसान को नसीब फरमाई, और इनको हवासे खमसा जाहिरा कहते हैं क्योंकि ये जाहिर हैं, सब इनको जानते हैं भाई। आंखें, तो आंखों में कौन सी कुव्वत, कुव्वत बासिरा, कानों में कुव्वत सामिया, नाक में कुव्वत शामह भाई, मीम मुशद्दद है, और जुबान में कुव्वत जायका, और पूरे बदन में कुव्वत लामिसा है, लम्स यानी छूना, किसी चीज को छूना। आपके बदन पर देखो कोई एक चीज किसी जगह पर लगती है आपको फौरन महसूस हो जाता है, तो ये कुव्वत लामिसा आपको बतलाती है। और इनमें से हर कुव्वत अपनी मखसूस जगह पर अल्लाह ने रखी है भाई। आंखों के जरिए आप चीजों को देख तो सकते हैं, आवाजों को नहीं सुन सकते, और कानों के जरिए आवाजों को तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो ये पांच हवास हैं, और इनके जरिए मुख्तलिफ किस्म के उलूम हम हासिल करते हैं। कान के जरिए मुख्तलिफ किस्म की आवाजें हासिल होती हैं, आंखों के जरिए चीजें देखते हैं, कुव्वत जायके के जरिए जायके का पता चलता है, शामा के जरिए मुख्तलिफ किस्म की जो बू हो उनका पता चलता है, और लम्स के जरिए और चीजों के हमवार सख्त वगैरह होने का पता चलता है। और फिर याद रखो, ये जो हमारा दिमाग है इसके तीन खाने हैं भाई, एक मुकद्दम अगला हिस्सा, एक वसत दरमियान में, और एक मुअख्खर है आखिर में। तो तीन खाने हैं, इनमें वो हवासे खमसा बातिना हैं। इनमें हवासे खमसा बातिना कौन से हैं, एक हिस्से मुश्तरक है, एक ख्याल है, एक वहम है, एक हाफिजा है और एक कुव्वत मुतसर्रिफा है। हिस्से मुश्तरक भाई ये दिमाग के अगले हिस्से में है भाई, अगले हिस्से में ये जो माथे के करीब है आगे वाला सामने वाला हिस्सा, इसमें हिस्से मुश्तरक है भाई। हिस्से मुश्तरक जो है यूं समझो कि ये मरकजी दफ्तर है जहां पर हवासे खमसा जाहिरा से आने वाली सारी मालूमात इकट्ठी होती हैं। आप जो कुछ देखते हैं ये सारी मालूमात कहां पहुंचती हैं? हिस्से मुश्तरक में। आप जो सुनते हैं वो हिस्से मुश्तरक में आता है। आप जिस चीज को छूते हैं, हाथ लगाते हैं, वो मालूमात कहां चली जाती हैं? हिस्से मुश्तरक में। आप जिस चीज को चखते हैं वो जायका कहां पहुंच जाता है? हिस्से मुश्तरक में। और इसी तरह जो चीज आप सूंघते हैं उसकी बू जो है हिस्से मुश्तरक में पहुंच जाती है। गोया ये एक मरकजी दफ्तर है। ये इसी तरह है जैसे आपका एक मरकजी दफ्तर हो और आप अपने आदमी मुकर्रर कर दें एक आदमी को शहर के फला हिस्से में कि भाई वहां से जो खबरें मिले आपने शाम को दफ्तर में पहुंचानी है सारी, दूसरे को दूसरे हिस्से में, तीसरे को तीसरे हिस्से में। तो जैसे वो सारे आदमी शाम को सारी खबरें लेकर आपके दफ्तर में पहुंचते हैं, इसी तरह ये जो हिस्से मुश्तरक है मरकजी खाना है, मरकजी दफ्तर है जहां इन हवासे खमसा जाहिरा से हासिल होने वाली सारी मालूमात इसके अंदर इकट्ठी होती चली जाती हैं भाई। गोया ये एक ऐसा तालाब है जिसमें पांच नहरें आकर गिर रही हैं, इलम का पानी इसमें बहता हुआ गिरता चला जाता है और ये सारी चीजें जो हिस्से मुश्तरक में आती हैं हिस्से मुश्तरक उनको जाया नहीं होने देती, वो इनको महफूज करती है अपने गोदाम में या अपनी अलमारी में और उसका नाम ख्याल है। ख्याल ये क्या है? ख्याल क्या है? ये गोदाम है, ये अलमारी है, ये स्टोर हाउस है जहां पर ये सारी मालूमात ये महफूज करती चली जाती है। चुनांचे आप एक जगह जाते हैं मुशायरा सुनते हैं, देखो अशआर सुने आपने, तो ये कानों ने वो सारी बातें कहां पहुंचाई? हिस्से मुश्तरक में। और फिर आप आंखों से देख भी रहे हैं कि कौन सा शायर है और क्या पढ़ रहा है, आंखें भी वो मंजर हिस्से मुश्तरक में पहुंचा रही हैं और वो सारा हिस्से मुश्तरक महफूज करती जा रही है। और फिर आप शाम को घर चले गए, रात को आप बैठे हुए हैं, आपको वही ख्याल आना शुरू हो गया कि फला शायर था, इस रंग के कपड़े पहने हुए थे, इस उम्र का था और उसने ये वाले अशआर बड़े जबरदस्त पढ़े। देखा भाई, वो तो वक्त गुजर चुका, वो शायर भी चला गया, वो वक्त भी चला गया, ये चीजें कहां से आई? ये वो जो ख्याल के अंदर महफूज थी भाई, वो ख्याल से आप सामने आपके आ रही हैं और आप उनको सोचते जा रहे हैं भाई। तो ये ख्याल के अंदर महफूज करती चली जाती है इन चीजों को। इसी तरह दिमाग के अंदर अल्लाह ने एक कुव्वत रखी है और उसका नाम कुव्वत वाहिमा है, कुव्वत वाहिमा, और इसी को वहम भी कहते हैं। याद रखो कुव्वत वाहिमा जो है वो मानिए जुजिया का इदराक करती है, मानिए। याद रखो ये जो हिस्से मुश्तरक में जो मालूमात आई इनको महसूसात कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो कुछ आपने आंखों से देखा ये भी महसूस, जो कानों से सुना ये भी महसूस, जो जुबान से चखा वो भी महसूस, जो नाक से सूंघा वो भी महसूस, और जो हाथ वगैरह के जरिए छुआ वो भी महसूस। इन सब को महसूसात कहते हैं क्योंकि ये मालूमात कहां से आई? हवास से, खमसा जाहिरा से। तो ये महसूसात हैं, ये सारे क्या हैं? याद रखो इल्मे मंतिक वगैरह में इन सब को महसूसात कहते हैं, उलूम में इन सब को क्या कहते हैं? महसूसात। हां आम बोलचाल में, उर्फ में आम लोग महसूस सिर्फ उन चीजों को कहते हैं जिनको जो आंखों से दिखाई दें, जो आंखों से दिखाई दें उसको महसूस कहते हैं, जो आवाजें हम सुन रहे हैं उसको वो महसूस नहीं कहते, जो जायके हम चख रहे हैं वो महसूस नहीं कहते, बल्कि सिर्फ जो आंखों से दिखाई देने वाली चीजें हैं उनको महसूसात कहते हैं। तो ये सारे महसूसात जो हैं ये महसूसात हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम हिस्सियात भी है। हिस्सियात क्योंकि हिस के जरिए हासिल हुई, यानी हवासे खमसा जाहिरा के जरिए, खमसा जाहिर। तो आम किताबों में ये महसूसात का लफ्ज जगह जगह आएगा, आपने खुद गौर कर लेना है कहीं पर महसूस कि बमाने होगा वो चीज जो आंखों से नजर आए, वो कहेगा ये चीज महसूसात में से है और ये चीज महसूसात में से नहीं है। मालूम हुआ, आप खुद गौर कर लेंगे कि ये सिर्फ महसूस से, वो आंखों से देखी जाने वाली चीजें मुराद हैं या ये तमाम महसूसात मुराद हैं। भाई तो एक हिस्से मुश्तरक है और फिर दूसरी कुव्वत क्या है, ख्याल है जो इन चीजों को अपने अंदर महफूज कर लेती है, और तीसरी कुव्वत जो है वह कुव्वत वाहिमा है, यह मानिए जुजिया का इदराक करती है। ये जो हिस्से मुश्तरक में जो जितनी मालूमात आई हवा से खमसा जाहिरा से, इनको सूरतें कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी सूरत से माना पहचान, पहचान। देखो एक खास जायका आपने चखा तो उसकी जो पहचान जहन में आ गई, आवाज सुनी आपने उस आवाज की पहचान आ गई आपके जहन में, तो इसको सूरत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सूरत से वो सूरत नहीं मुराद जो आप खारिज में किसी की तस्वीर होती है आप इसको कहते हैं सूरत, नहीं नहीं, यहां सूरत से मुराद है पहचान, पहचान। देखो आपको अपने एक दोस्त की आवाज की पहचान है, आप बेशक आपकी आंखें बंद हों और आपका दोस्त कहीं बातें कर रहा हो, आप सुनते ही आपको पता लग जाएगा ये फला आदमी बातें कर रहा है, या फला मेरा भाई है वो बात कर रहा है, या मेरे उस्ताद हैं वो बात कर रहे हैं। अगरचे आपकी निगाहों के सामने वो नहीं होते, लेकिन आपके जहन में उनकी आवाज की सूरत महफूज होती है, उसके जरिए आप उसको पहचान लेते हैं। तो ये जो हवास, जो हिस्से मुश्तरक में जो मालूमात आई, ये जुजी सूरतें हैं। ये क्या हैं? जुजी, या यूं कह सूअर जुजिया हैं, ये जुजी सूरतें हैं। और सिर्फ सूरतों का इलम नफ्स को चाहिए या मानिए जुजिया का इलम भी चाहिए? मानिए जुजिया का भी इलम चाहिए। तो उसके लिए अल्लाह ने कुव्वत वाहमा नसीब फरमाई है। कुव्वत वाहमा जो है वह मानिए जुजिया का इदराक करती है। किसका? मानिए जुजिया का। भाई देखो, आपको प्यास लगती है या नहीं? भूख लगती है। कभी आप खुश होते हैं, कभी गमजदा होते हैं। मुझे बताइए, ये भूख का पता किससे चला? आंखों ने बताया? कानों ने? जुबान ने? नाक ने? लामिसा ने? नहीं। ये कोई कुव्वत तो है जो हमें बता रही है कि भूख लग गई है या प्यास लग गई है। कई दफा आप सोए होते हैं, नींद से उठ जाते हैं, प्यास की वजह से वो कुव्वत आपको बेदार कर देती है, प्यास लगी है और आप उठते हैं और फौरन पानी पी लेते हैं। तो ये एक कुव्वत है, ये कुव्वत वाहिमा है भाई। ये कुव्वत, ये मानिए जुजिया का इदराक करती है ये कुव्वत। और वो जो हवास खमसा जाहिरा थे वो जुजी सूरतों का इदराक करते थे, ये मानिए जुजिया का इदराक करती है। मसलन मसलन आपने सांप को देखा और आप एकदम खौफजदा हो गए। एक खौफ है जो कुल्ली है, उसका इदराक अकल करती है कि खौफ क्या चीज है। एक भूख कुल्ली है, उसका इदराक अकल करती है। एक प्यास कुल्ली है, और एक है इस वक्त आपको प्यास लगे, ये तो प्यास कौन सी है? जुजी प्यास है। तवज्जो है? तो एक कुल्ली प्यास है, एक जुजी प्यास है। इसी तरह एक कुल्ली भूख है कि भूख का क्या माना होता है, किसको कहते हैं, वो अकल जानती है, वो उनका इदराक अकल करती है। और ये जो जुजी मानी है इनका इदराक कौन करती है? कुव्वते वाहमा। तो एक खौफ, खौफ किसे कहते हैं, इसका इदराक अकल करती है क्योंकि खौफ एक कुल्ली है। लेकिन एक जुजी खौफ, आपने सांप को देखा और एकदम डर गए, ये खौफ जो आपने महसूस किया ये कुल्ली था या जुजी था? ये जुजी खौफ है जो सांप को देखकर आपको लाहिक हुआ है, तो इसका इदराक कौन करती है? कुव्वते वाहिमा करती है। या बकरी के बच्चे ने भेड़िए को देखा, आप देख रहे हैं कि बकरी के बच्चे के सामने भेड़िया आया और वो एकदम सहम गया, डर गया भाई। या उसके सामने कुत्ता आया और वो डर गया और सहम गया। तो देखा, ये खौफ ये कुल्ली खौफ नहीं है बल्कि जुजी खौफ है जो इस बकरी के बच्चे को लाहिक हुआ, किसको देखकर? इस मखसूस कुत्ते को देखकर या मखसूस भेड़िए को देखकर। ये क्या है? मानिए जुजिया है। अब बताओ, खौफ की कोई सूरत होती है? आपने कभी देखा खौफ?
नहीं।
खौफ एक माना का नाम है। सखावत क्या है? सखावत एक माना है। यह सखावत कुल्ली भी हो सकती है। सखावत किसको कहते हैं? और एक जुजी जैद की सखावत है। देखो, जैद की सखावत क्या है? जुजी सखावत है भाई। तो सखावत यह भी एक माना है। इसी तरह खौफ यह भी एक माना है। भूख, भूख की क्या शक्ल होती है, कभी आपने देखी है?
नहीं।
प्यास की क्या शक्ल होती है? नहीं देखी। ये मानी है भाई, इनकी सूरतें नहीं है। तो ये मानी जुजिया का इदराक कौन करती है? कुव्वते वाहमा करती है भाई। और फिर कुव्वते वाहमा इन मानी जुजिया का इदराक करने के बाद इनको अपने स्टोर हाउस यानी हाफिजे में महफूज कर लेती है। तो कुव्वते वाहमा का स्टोर हाउस या अलमारी का क्या नाम? हाफिजा। हाफिजा इसी का नाम कुव्वते जाकेरा भी है। कुव्वते जाकेरा और कुव्वते हाफिजा एक ही चीज के नाम है भाई। तो ये इनको वो अपने स्टोर हाउस में महफूज कर लेती है। चुनांचे कई दिन बाद अचानक आप अपने साथी को बताते हैं कि भाई फलां दिन था, मुझे बड़ी भूख लगी थी, वो उस दिन की भूख आज आपको याद आई। ये कहां से हुआ, कैसे हुआ? ये वो कुव्वत हाफिजा ने आपके सामने लाकर पेश कर दी, इसने उसको महफूज कर लिया था भाई। या किसी दूसरे साथी को जाकर आप बताते हैं कि मैं इस तरह जंगल में जा रहा था, एक मैंने बकरी के बच्चे को देखा कि भेड़िए को देखकर वो एकदम सहम गया, खौफजदा हो गया। तो इसमें वो मुशाहिदा भी आपका आ गया और नीज वो खौफ जो जिसको आपने महसूस किया कि वो डर गया है, उसका इदराक किसने किया? कुव्वत वाहिमा ने। और महफूज कहां किया? कुव्वत हाफिजा और कुव्वत जाकिरा में भाई। और फिर एक पांचवी कुव्वत भी अल्लाह ने नसीब फरमाई है और वो है कुव्वत मुतसर्रिफा, जो मुख्तलिफ किस्म के तसर्रुफात करती है। तसर्रुफात ये जोड़ तोड़ वाला काम करती है, जोड़ तोड़ वाला काम करती है। ये हाफिजे से भी चीजें लेती है, ये ख्याल से भी चीजें लेती है। ख्याल जो स्टोर हाउस है किसका? हिस्से मुश्तरक का, जिसमें सूरतें महफूज हैं। और हाफिजा जिसके अंदर मानी जुजिया महफूज हैं, इनसे चीजों को लेकर जोड़ तोड़कर नई सूरतें उनको देती है भाई। बात समझ में आ गई? जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया, फर्ज करो एक इंसान है दौड़ता हुआ जा रहा है और उसका सर कंधे पर नहीं लगा हुआ, उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, सर कंधे से अलग है और वह दौड़ता हुआ जा रहा है। तसव्वुर कर लिया, एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है और सर कंधे पर नहीं लगा हुआ बल्कि कहां पर है? उसके हाथ में है, उसने पकड़ा हुआ है और भागता हुआ जा रहा है। भाई ये तोड़ वाला काम किसने किया? ये कुव्वत मुतसर्रिफा ने किया। इंसान तो बगैर सर के नहीं जिंदा रह सकता, लेकिन उसने उस सर को अलहदा भी किया और उसके बगैर उसको दौड़ाकर भी आपको ख्याल में दिखा दिया भाई। तो ये देखो तोड़ वाला काम किया, सर को क्या कर दिया? जुदा कर दिया कंधे से। यह कभी जोड़ वाला काम करती है, फर्ज करें आप एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है और उसके कंधे पर दो सर लगे हुए हैं, तसव्वुर कर लिया, देखा ये जोड़ वाला काम किसने किया? एक और सर लाकर जोड़ दिया, ये कुव्वत मुतसर्रिफा ने। तो ये कुव्वत मुतसर्रिफा बड़ी कवि कुव्वत है भाई। ये मुख्तलिफ जो चीजें लोग बनाते हैं, सोचते हैं कि इस तरह करूंगा तो इस तरह हो जाएगा, और फिर नई नई इजादात करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, ये सारा किसका काम होता है? कुव्वत मुतसर्रिफा करती है कि यूं करो तो यूं हो सकता है, यूं करोगे तो यूं हो सकता है भाई। तो वो कहां से? मानिए जुजिया लेती है कुव्वत हाफिजा से, और सूरे जुजिया लेती है कहां से? ख्याल से। और नई नई सूरतें और शक्लें और बातें पेश करती है जहन के सामने भाई। तो ये पांच कुव्वतें हैं और इनको हवासे खमसा बातें ना कहते हैं। कौन कौन सी? हिस्से मुश्तरक, ख्याल, कुव्वत वाहिमा, कुव्वत हाफिजा और कुव्वत मुतसर्रिफा। कुव्वत मुतसर्रिफा तो ये जिन चीजों का इदराक हवासे खमसा बातिना करते हैं उनको विजदानियात कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिनका इदराक जो है हवासे खमसा जाहिरा करते हैं उनको महसूसात और हिस्सियात कहते हैं। और ये दोनों दाखिल हैं मुशाहदात में। ये दोनों किस में दाखिल? भाई बदीहियात की अकसाम बयान हो रही थी। अव्वलियात वो कजाया बदीहिया हैं जहां आप तरफेन का तसव्वुर कर लें और उनके दरमियान निस्बत का तसव्वुर कर लें तो जहन उसको मान लेता है, उसका यकीन कर लेता है। इसी तरह एक दूसरी किस्म बदीहियात की वो मुशाहदात है। ये जो आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जुबान से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, हाथों के जरिए छूते हैं, ये सारी भी आपको यकीन का फायदा देते हैं भाई। आपने देखा गुलाब का फूल किस रंग का होता है? सुरख रंग का। यकीन कर लिया या नहीं? यकीन कर लिया। देखा तो ये मुशाहदात के जरिए हासिल। इसी तरह हमें भूख लगी लगती है या प्यास लगती है, इसका पता हमें किसके जरिए चलता है? हवासे खमसा बातेना के जरिए। तो इनको तो ये विजदानियात हैं। ये क्या हैं? विजदान। तो मुशाहदात में ये दो चीजें आ गई, कौन कौन सी? महसूसात और विजदानियात। फिर दोहराओ, मुशाहदात में क्या क्या दाखिल? महसूसात और विजदानियात। महसूसात, और इसी तरह इनका दूसरा नाम क्या? हिस्सियात। इनका इलम किसके जरिए होता है? हवासे खमसा जाहिरा के जरिए। और जो विजदानियात हैं कि कभी हम खुश होते हैं, कभी गमजदा होते हैं। देखो खुशी, कभी आप खुश पर खुशी की कैफियत आती है, खुशी को आपने देखा है किस रंग की होती है, या गम को देखा है? नहीं। हां, ये मानी है जिनका हम इदराक करते हैं। तो ये खुशी, गमी, भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, दर्द, ये सारी चीजें इनका इदराक कौन करती है? कुव्वते वाहिमा करती है। कुव्वते वाहिमा करती है। कभी हम देखते हैं कि बड़े हम खुश हैं, कभी मालूम होता है कि हम पर गम की कैफियत तारी है। ये दुख, गम, खुशी वगैरह, इन सब का इदराक कुव्वते वाहिमा करती है भाई। जबकि बाज उलमा कहते हैं कि इनका इदराक एक अलग कुव्वत है जिसका नाम विजदान है। जिसका नाम क्या है? विजदान है, जो नफ्स की सिफात का इदराक करती है, खुशी, गम, भूख, प्यास वगैरह, इसका नाम विजदान। जबकि और उलमा फरमाते हैं कि यह ऐन कुव्वत वाहिमा ही है, कुव्वत वाहिमा इन सब चीजों का इदराक करती है भाई। तो देखो ये मुशाहदात दूसरी किस्म हो गए बदीहियात की। इनके जरिए जो इलम हासिल होगा वो भी यकीनी है। आप जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, उन पर यकीन होता है कि नहीं? उन पर यकीन होता है। तो अव्वलियात में जहन एक चीज का एतिकाद कर लेता है, सिर्फ किस चीज के जरिए? तरफेन का तसव्वुर करता है और निस्बत का तसव्वुर करता है, और जहन उसको एतिकाद कर लेता है, उसका यकीन कर लेता है। जबकि मुशाहदात के में वासिता चाहिए, बगैर वासिते के वो यकीन नहीं करेगा जहन। और वो वासिता हवासे खमसा जाहिरा भी हो सकते हैं और हवासे खमसा बातिना भी हो सकते हैं। आपको पता है गुलाब का फूल सुर्ख रंग का है, आपके लिए यह बात यकीनी है, आपका इस पर यकीन है, आपने इसको तस्लीम कर लिया है। लेकिन एक आदमी जिसने गुलाब के फूल को नहीं देखा, उसकी खुशबू को नहीं सूंघा, उसके लिए यह बात यकीनियात में से नहीं है भाई। तो लिहाजा ये जो मुशाहदात हैं इनमें वासिता चाहिए भाई। और वो वासिता क्या होता है? हवासे खमसा जाहिरा या हवासे खमसा भाई। मैं बार बार तकरार करवा रहा हूं, जुबान से दोहराएं ताकि आपके जहन में ये चीजें जम जाएं भाई। तो मुशाहदात में क्या क्या शामिल? एक महसूसात और एक विजदानियात। महसूसात जो किसके जरिए इलम हासिल हो? हवासे खमसा जाहिरा। और विजदानियात वो इलम जो हवासे खमसा बातिना के जरिए हासिल हो। तो ये जो मुशाहदात हैं ये इन दोनों को शामिल है, और इसके अंदर देखो वास्ता चाहिए, इस बगैर वास्ते के यहां यकीन नहीं है। और वो वास्ता क्या है? ये हवासे खमसा जाहिरा या बातिना है। तीसरी चीज देखिए, औ तजरिबियात भाई। तजरिबियात, रा के नीचे भी जेर है और बा के नीचे भी जेर, तजरिबियात। जर्रब युजर्रिबु तजरिबतन तफइलतुन, मस्तर है भाई, और इसी के साथ या निस्बत मिला दी। तजरिबियुन, लाहौरियुन का क्या माना? लाहौर वाला। तो तजरिबियुन, तजर्बे वाला, और इसी की जमा है तजरिबियात। तजरिबियात वो चीजें हैं जो बार बार के तजर्बे से मालूम होती हैं। बास चीजों पर इंसान यकीन करता है, और वास्ता क्या होता है? बार बार का तजर्बा। मसलन कोई चीज आप खाते हैं, उससे आपको कोई फायदा महसूस होता है, दो चार पांच दफा दस दफा आप तजर्बा करते हैं और फिर आप कह देते हैं कि भाई इस चीज का यह फायदा है। देखा, आपने कुल्ली हुक्म लगा दिया और कितनी दफा तजर्बा किया? दो चार दफा, आठ दफा, दस दफा। इसी तरह हकीम और तबीब वगैरह, उनकी मुख्तलिफ दवाइयां होती हैं, तो वो भी मुख्तलिफ तजर्बात के बाद उनको मालूम होता है कि इस चीज का यह फायदा है और इस चीज का यह नुकसान है भाई। तो ये तजरिबियात, इसके जरिए भी यकीन का इलम हासिल होता है, और यहां वासिता तजर्बा होता है। वासिता क्या है? अव्वलियात में कोई वासिता है नहीं। और मुशाहदात में वासिता है। क्या है वासिता? हवा से खमसा जाहिरा या बातिना। और तजरीबियात में क्या वासिता है? इनमें तजरीबा वासिता है, वासिता है। अगली किस्म है बदीहियात की, भाई हदसियात, भाई ये दाल साकिन है। हदसियात के अंदर वासिता हदस होता है। क्या होता है वासिता? हदस वास्ता होता है। हदस का माना कर लें जहानत, जहानत। बाज लोगों को अल्लाह ने खास जहानत दी होती है भाई, वो फौरन मबादी से नतीजे तक पहुंच जाते हैं। आम लोगों को चीजों में गौर करना पड़ता है फिर जाकर वो नतीजे तक पहुंचते हैं, और ये लोग, इनको पर अल्लाह ने खास इनको जहानत दी होती है, मबादी से फौरन नतीजे तक ये पहुंच जाते हैं। और हदस के मुकाबले में है फिक्र भाई, नजर व फिक्र। नजर व फिक्र किसे कहते हैं? आपने पढ़ा था कि मालूम चीजों को तरतीब देकर कहां तक पहुंचना, मजहूल चीज तक, इसको क्या कहते हैं? नजर व फिक्र। भाई नजर व फिक्र के अंदर याद रखो जहन दो हरकतें करता है। क्या करता है? मसलन आप इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि इंसान की हकीकत क्या है, चुनांचे आपका फौरन आपका जहन जाएगा, फिर आपकी फिक्र उसमें दो हरकतें होंगी। जहन जाएगा कहां पर? वो जहन में जो कुछ महफूज था ख्याल और हाफिजे के अंदर, जहन फौरन वहां जाकर तलाश करेगा इंसान की हकीकत क्या चीज है, कौन सी चीज इसकी हकीकत हो सकती है, उनमें सारी चीजों में गौर करेगा और फिर बिल आखिर वहां से दो चीजें निकाल के ले आएगा। एक है हैवान, एक है नातिक। एक क्या? हैवान और एक नातिक। तो ये पहली हरकत भाई, जहन में देखो आपके जहन में लाखों करोड़ों चीजें महफूज होती हैं, फिक्र हरकत करती है और दो चीजें निकाल कर ले आई या तीन चीजें निकाल कर ले आई कि ये है इस चीज की हकीकत, और फिर उनको तरतीब देती है कि देखो हैवान ये जिंस है, इसको पहले होना चाहिए, और नातिक ये क्या है? फसल है, इसको बाद में होना चाहिए। चुनांचे उनको जोड़कर आपको बताया कि इंसान की हकीकत हैवान नातिक है। तो यहां दो हरकतें होती हैं, एक क्या कि वो जहन में जो चीजें महफूज हैं उनमें से चुन लेना कि क्या क्या चीज इसकी हकीकत है, उनको निकाल कर अलग करना, और दूसरा है उसको तरतीब देना। जैसे आपके सामने किसी चीज के पुर्जे पड़े हुए हों, दो या तीन चीजों के पुर्जे पड़े हैं, मसलन दो तीन घड़ियों के पुर्जे आपके सामने पड़े हैं, अब आप उनमें से एक घड़ी तैयार करना चाहते हैं तो आपको दो काम करना पड़ेंगे। मसलन एक घड़ी छोटी है एक बड़ी है, अब आप छोटी घड़ी तैयार करना चाहते हैं तो, और दोनों के पुर्जे इकट्ठे पड़े हैं तो आप दो काम करेंगे, पहले इस छोटी घड़ी के सारे पुर्जे अलहदा करेंगे और फिर उसके बाद इनको तरतीब से देखकर जोड़ेंगे तो छोटी घड़ी हासिल हो जाएगी। तो दो काम करना पड़ते हैं, एक इंतखाब और एक तरतीब। इंतखाब और तरतीब, इंतखाब करना है, चुनना पड़ेगा कौन कौन से इसके पुर्जे हैं। अगर आपने सही पुर्जे चुने तो फिर घड़ी बनेगी, अगर सही पुर्जे न चुने तो घड़ी भी नहीं बनेगी। तो सही पुर्जे भी चुनने पड़ेंगे और फिर इनको सही तरतीब भी देना पड़ेगी, फिर ही आपको घड़ी हासिल होगी। तो इसी तरह जब किसी चीज की हकीकत मालूम करनी है, किसी चीज की तारीफ करनी है, तो आप जहन में जाते हैं, गौर करते हैं और उसकी उससे मुतालिका जितनी बातें होती हैं उनमें गौर करके, उनमें से जो चीज चाहिए होती है उनको, उसको मुंतखब करके आप जहन निकाल लेता है। और फिर दूसरी हरकत जहन यह करता है कि उनको तरतीब देता है, किसको पहले होना चाहिए किसको बाद में होना चाहिए, और फिर तरतीब देकर एक खास सूरत दे देता है, और इस तरह उस चीज की हकीकत या तारीफ का हमें पता चल जाता है। और यह है फिक्र। यह क्या है? फिक्र। इसमें देखो दो हरकतें करना पड़ी, और एक है हद्स भाई, हा दाल और सीन, दाल साकिन है। हद्स में भी ये दो हरकतें होती हैं, बात समझ में आ गई, लेकिन इतनी रफ्तार से होती हैं कि पता ही नहीं चलता भाई, बात समझ में आ रही जी। हद्स एकदम मबादी नतीजे तक पहुंच जाता है भाई, मबादी से एकदम नतीजे की तरफ पहुंच जाता है। और ये हद्स या तो अल्लाह की तरफ से खास इनाम होता है, किसी को अल्लाह ने बड़ी जहानत दी होती है, और बाज औकात ये मेहनत और शौक के जरिए हासिल हो जाता है। मेहनत और चुनांचे इंसान एक काम में लगा रहता है, शौक भी होता है, मेहनत भी करता रहता है, बिल आखिर उसमें उसको हदस हासिल हो जाता है। जैसे देखो भाई, देखो भाई, आपने शुरू में सर्फ पढ़ी, आपसे जब कोई सीगा पूछा जाता तो आप जहन में सोचना शुरू कर देते, दिमाग के अंदर वो जो गर्दानों के सीगे होते थे उनमें घूमना शुरू हो जाते, कौन सा पुर्जा ठीक है, कौन सा इसके मुताबिक है, और फिर उसमें से एक सीगा हां शायद ये वाला होगा, वो निकाल कर ले आते और फिर बताते कि ये वाला होगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक और मेहनत की वजह से आपको महारत हासिल हो गई। अब जैसे ही सीगा बोला जाता है आप अगले ही लम्हे में फौरन जवाब दे देते हैं। मसलन मैं आपसे कहता हूं मुकरिमुन कौन सा सीगा है, इसमें फायद देखा, ये बगैर सोचे जुबान चल पड़ी या सोचा? हां हां हां, सोचा तो, लेकिन इतनी रफ्तार से हुआ कि पत्ता ही नहीं चला भाई। चुनांचे आप इबारत में देख लें, आप इबारत पढ़ते हैं, एराब उस पर नहीं लगे होते, जेर जबर कुछ नहीं है। शुरू में जब आप इबारत पढ़ते थे तो आप एक एक लफ्ज पे गौर करते थे कि इसको मरफू पढ़ना है, मंसूब पढ़ना है, मजरूर पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और अब जब आप इबारत पढ़ते हैं तो जुबान चल रही होती है, और जिस रफ्तार से जुबान चल रही है जहन साथ साथ बताता जा रहा होता है, साथ साथ चल रहा है, बताता जा रहा है कि ये फाइल है और फाइल मरफू होता है, इस पर रफा पढ़ना, ये मफूल है, इस पर मनफू मनसूब होता है, इस पर नसब पढ़ना, ये इस पर हरफ जर दाखिल है, इस पर जिस पर हरफ जर दाखिल उस पर जर, देखो कितनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं, लेकिन इतनी रफ्तार से होता चला जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता भाई। ये है हद्स भाई, एकदम मबादी से जहन कहां तक चला गया, नतीजे तक चला गया। जराबा जैदुन, मैंने कहा जराबा जैदुन पढ़ो, आपने फौरन पढ़ दिया, हालांकि आपके जहन ने सबसे पहले जहन में ये आया कि ये फाइल है, और फिर आपके जहन में आया कि फाइल क्या होता है, मरफू, लिहाजा इसको भी क्या होना चाहिए, मरफू, और फिर आपने पढ़ा। लेकिन कितनी रफ्तार होती है कि पता ही नहीं चलता, इतनी रफ्तार से यह सारा कुछ होता है। तो हदस किसे कहते हैं कि जहन मबादी से एकदम कहां पहुंच जाए, नतीजे तक पहुंच जाता है भाई। और यह हदस मैंने बताया मुख्तलिफ होता है, बाज को अल्लाह ने वैसे ही जहानत, खूब जहानत आता की होती है, और बाज जो हैं वो अपनी मेहनत शौक और कोशिश के जरिए इस हदस को हासिल कर लेते हैं। और फिर यह हदस में मुख्तलिफ होता है, किसी को बहुत ज्यादा हदस होता है, बड़ा कवी हदस होता है, और बाजों का ज़ईफ होता है, और बाजों के पास बिल्कुल हदस होता ही नहीं, उनको हर बार गौर फिक्र करना पड़ता है एक चीज में। तो यह है हदस भाई। तो यहां देखो जराबा जैदुन, मैंने कहा यह पढ़ो, आपने जराबा जैदुन पढ़ा, दलील के साथ पढ़ा या बगैर दलील के पढ़ा? दलील जहन में आई कि जैदुन फाइल है, और हर फाइल क्या होता है, मरफू, लिहाजा यह भी क्या होगा, मरफू। दलील भी आई, लेकिन इतनी रफ्तार से दलील आई कि आपको खुद भी नहीं पता लगा भाई, मबादी से एकदम नतीजे पर जहन चला गया। लिहाजा इसको कहना तो नजरी चाहिए, वो चीज जो दलील के मोहताज हो उसको क्या कहते हैं, नजरी। बदीही तो दलील के मोहताज नहीं होती, उसमें किसी दलील की जरूरत नहीं होती, इंसान उसको वैसे ही मान लेता है। तो ये हदसियात जो हैं इनको नजरी होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां जो दलील भी आती है वो इस तरीके से आती है कि पता ही नहीं चलता इतनी बर्फ रफ्तारी से, तो गोया यहां भी दलील ला दलील के दर्जे में है, यह दलील भी ला दलील के दर्जे में है, तो लिहाजा इसलिए इसको बदीहियात में शुमार करते हैं। तो यह है हदसियात। अगली किस्म है भाई मुतवातिरात भाई, मुतवातिरात। मुतवातिरात वो बातें जिन पर आप यकीन कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसको नकल करने वाले इतने ज्यादा लोग होते हैं कि अकल फैसला कर देती है कि इतने लोग झूठ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। मसलन आपने मक्का नहीं देखा, लेकिन आपको यकीन है कि मक्का मौजूद है, क्योंकि इतने लोगों ने आपको इत्तला दी है कि आपका जहन कहता है कि इतने लोग झूठ पर इकट्ठे नहीं हो सकते भाई। अमेरिका आपने नहीं देखा, लेकिन आपको यकीन है कि अमेरिका मौजूद है, क्योंकि इतने लोग खबर देने वाले हैं कि आपका जहन बता देता है कि इतने लोग झूठ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। जब ये सब ये कह रहे हैं कि अमेरिका एक मुल्क है, तो लिहाजा यकीनन अमेरिका क्या है, कोई मुल्क होगा भाई। तो यहां देखो, यहां वासिता लोगों के जरिए आपको खबर मिली है, अव्वलियात में वासिता नहीं था, मुशाहदात में वासिता हवास खमसा जाहिरा या बातिना थे, तजरीबियात में वासिता तजर्बा था, और हदसियात में वासिता हदस है। क्या है? हदस है। और ये मुतवातिरात में तवातुर है, यानी इतने लोगों का खबर को नकल करना। जैसे कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए 1400 साल से ज्यादा गुजर गए, और आज भी हर मुसलमान को यकीन है कि ये अल्लाह की आखिरी किताब है जो अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, और ये बेआईनी ही वही किताब है जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। इसमें एक जर्रा बराबर भी कमी बेशी नहीं हुई हुई। क्यों? क्योंकि इसको नकल करने वाले इतने लोग हैं कि इतने लोग झूठ पर इकट्ठे हो जाएं मुमकिन ही नहीं है भाई। नमाजें पांच ही हैं भाई, क्योंकि इसको नकल करने वाले इतने लोग हैं कि हो ही नहीं सकता कि इतने लोग झूठ पर इकट्ठे हो जाएं। आप दुनिया के जिस कोने में भी चले जाएं, मुसलमान पांच ही नमाजें पढ़ता हुआ आपको मिलेगा भाई। तो ये क्या है? मुतवातिरात भाई, मुतवातिरात। तवातुर में कितने अफराद खबर दें तो उसे यकीन हासिल होगा? तो बाज ने लिखा 4 अफराद, बाजों ने लिखा 10 अफराद कम अज कम इतला दें, बाजों ने कहा 40 अफराद कम अज कम होने चाहिए। लेकिन हक यह है कि इसमें कोई आदद मुतायन नहीं है, बस इतनी बड़ी तादाद हो कि जिनके अकल खुद फैसला कर दे कि इतने लोगों का झूठ पर जमा होना महाल है भाई। और फिर अगर यह सिलसिला बस सिलसिला हो, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल, फिर चौथी नस्ल की तरफ यह बात मुंतकिल हुई है, तो फिर इस सूरत में हर सिलसिले के अंदर लोगों की इतनी तादाद का होना जरूरी है। जैसे कुरान हम तक 1400 साल के अरसे में पहुंचा है, तो हर नस्ल के अंदर इतनी कसीर तादाद होना जरूरी है। अगर किसी भी तबके में जाकर अफराद की तादाद थोड़ी सी हो गई तो फिर वो यकीन का फायदा नहीं देगी भाई, फिर तो शक आ जाएगा, पता नहीं बात ऐसी है या ऐसी नहीं है। तो अगर यह रिवायत सिलसिला बे सिलसिला हो, तो हर सिलसिले में लोगों की इतनी कसीर तादाद का होना जरूरी है कि अकल इतने लोगों के झूठ पर जमा होने को महाल समझे भाई। तो यहां पर मुतवातिरात में क्या वास्ता है? तवातुर है। इससे एक और बात का भी आपको पता चल गया, एक और बात का कि ये जो बुरहान जो है, बुरहान किन से मुरक्कब होती है? यकीनियात से। बुरहान यकीनियात से मुरक्कब होती है। ये जो यकीनियात हैं, ये अकली भी हो सकते हैं और नकली भी। अकली जिसमें अकल फैसला करती है कि बात ऐसी ही है, और नकली जिसमें लोगों से नकल होकर एक बात आप तक पहुंचे, उसके जरिए भी यकीन हासिल हो जाता है। जब वो किस कबील से हो? तवातुर की। देखा, इसमें नकल है, लोगों से बात नकल दर नकल होकर आप तक पहुंचती है भाई। तो लिहाजा वो जो यकीनियात हैं जिनसे बुरहान बन रही है, उसके वो मुकदमात अकली भी हो सकते हैं और नकली भी। अकली का क्या माना? जिसमें नकल का कोई दखल ना हो, सिमा का कोई दखल नहीं, आपकी अकल आपको बतलाती है कि ऐसा ही है और इसमें किसी किस्म का शक और शुबा नहीं है। और कुछ वो हैं जो नकल के जरिए यानी पहुंचते हैं आप तक, उसमें सिमा का दखल होता है, आप लोगों से उस तरह सुनते हैं, लेकिन उसको नकल करने वाले इतने ज्यादा होते हैं कि अकल उसको यकीनी तस्लीम कर लेती है कि बात ऐसी ही है, वरना इतने लोग इस तरह नकल ना करते भाई। दोहराइए भाई, अब अव्वलियात में वासिता होगा या नहीं? वासिता होगा, लेकिन उसकी तरफ जहन जाएगा ही नहीं, उसके बगैर ही जहन यकीन कर लेगा। मुशाहदात में वासिता होगा, क्या? हवासे खमसा जाहिरा या हवासे खमसा बातिना। तजरीबियात में वासिता तजर्बात, और हदसियात में वासिता हदस होगा। मुतवातिरात में वासिता तवातुर होगा भाई। और आखिरी किस्म है फितरियात। फितरियात, फितरियात वो कजाया हैं जिनके यकीन करने के लिए, जिनको मानने और उस जिसका एतकाद करने के लिए सिर्फ तसव्वुर तरफेन और तसव्वुर निस्बत काफी नहीं, बल्कि यहां वास्ते की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 4 जुफ्त है, आप फौरन तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन वैसे ही तस्लीम किया या जहन में दलील भी साथ ही आ गई? दलील भी साथ ही आ गई। मैंने कहा अल अरबातु ज़ौजुन, चार जुफ्त है। आपने अरबा का भी तसव्वुर किया और ज़ौज का भी तसव्वुर किया कि ज़ौज किसे कहते हैं जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो, और फिर फौरन ही चार का भी जायजा लिया कि चार भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम होता है, और फिर अज़हन ने उसका यकीन कर लिया भाई। तो इनको फितरियात कहते हैं, और तो फितरियात के अंदर वास्ते की जरूरत होती है और ये दलील की जरूरत होती है, लेकिन वो दलील साथ ही आ जाती है, इनसे जुदा नहीं होती। जैसे ही ये जहन में आते हैं साथ ही दलील भी जहन में आ जाती है, उसमें अलहदा गौर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सा तो इनको कहते हैं कजाया कियासातुहा माहा, कजाया कियासातुहा माहा, ये ऐसे कजिए हैं जिनके कियास उनके साथ होते हैं। ये ऐसे कजिए हैं भाई, देखो ना, मैंने कहा आपसे अल अरबातु ज़ौज, अरबा ज़ौज है, आपने फौरन देखा कि जहन में फौरन कियास बन गया, क्या अरबा दो बराबर हिस्सों में तकसीम होता है, और जो चीज दो बराबर हिस्सों में तकसीम होती है वो क्या होती है, ज़ौज होती है। नतीजा क्या निकला, अरबा भी ज़ौज है। देखो ये सारा कियास आपके जहन में फौरन आया आपने, और फिर आपके जहन ने यकीन कर लिया कि चार भी क्या है, जो ज़ौज है। तो यहां पर ये जो फितरियात होते हैं इनमें वासिता होता है, लेकिन वो वासिता इनसे जुदा नहीं होता। जैसे ही यहां पर तसव्वुर तरफैन और निस्बत जहन में आती है, साथ ही खुद ब खुद दलील भी आ जाती है। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना कहा अल अरबातु ज़ौजुन, लेकिन आपने फौरन मान लिया या नहीं, कोई दलील नहीं मुझसे मांगी, क्योंकि जैसे ही अल अरबातु ज़ौजुन आपके जहन में आया, साथ ही क्या आ गई, इसकी दलील भी खुद ब खुद आ गई। तो ये ऐसे कजिए हैं जिनके कियास इनके साथ होते हैं, जुदा नहीं होते। तो यहां वासिता है, दलील है, लेकिन वो दलील इनके साथ ही जहन से में आती है, इनसे जुदा नहीं होती कि आपको गौर व फिक्र करना पड़े। जैसे ही ये जहन में आते हैं साथ ही दलील आ जाती है। या जैसे मैं आपसे कहता हूं पांच ताक है, पांच ताक है, फौरन आपके जहन में दलील भी आ गई और आपने मान भी लिया कि यह वाकई ताक है, क्योंकि यह दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होता। तो फितरियात के अंदर वास्ते की जरूरत पड़ती है। तो अव्वलियात और फितरियात में क्या फर्क हुआ कि अव्वलियात के अंदर कोई वास्ते की जरूरत नहीं पड़ती, वास्ते की तरफ जहन मुतवज्जे नहीं होता, और फितरियात में वास्ते की तरफ जहन मुतवज्जे होता है, मुतवज्जे होता है। लेकिन यह वासिता इस कजिए से जुदा नहीं होता। इधर जैसी यह बात जहन में आती है, साथ ही उसकी दलील भी आ जाती है, तो साथ ही उसकी दलील भी आ जाती है। तो ये इसको फितरियात कहते हैं। क्या कहते हैं, फितरियात। और ये मैंने बताया आपको वासिता अव्वलियात में भी होता है, लेकिन जहन उसकी तरफ जाता नहीं है, दलील वहां भी होती है। जैसे अलकुल्लु आजमु मिनल जुज, कुल क्या होता है, जुज से बड़ा होता है, इसके लिए दलील हो सकती है, लेकिन उसकी तरफ जहन जाता ही नहीं है भाई। जबकि फितरियात में दलील की तरफ जहन जाता है, लेकिन गौर नहीं करना पड़ता। जैसे ही ये कजिया जहन में आता है, ये बात जहन में आती है, साथ ही दलील भी खुद ब खुद आ जाती है। और अगर अलकुल्लु आजमु मिनल जुज, कुल जो है वो जुज से बड़ा होता है, इसमें किसी के जहन में यह बात आती है और साथ दलील भी आ जाती है, मालूम हुआ यह इसके लिए अव्वलियात की कबील से नहीं है, यह फितरियात की कबील से है। तो एक चीज एक के लिए अव्वलियात की कबील से हो सकता है दूसरे के लिए किस कबील से हो, फितरियात की कबील से हो। तो वासिता फितरियात में भी होता है, वास्ता अव्वलियात में भी होता है, लेकिन अव्वलियात में जहन वास्ते की तरफ जाता ही नहीं, देखता ही नहीं उसकी तरफ, जबकि फितरियात में जहन वास्ते की तरफ देखता है, लेकिन वो वास्ता जुदा नहीं होता इससे। जैसे ये बात जहन में आती है, साथ ही दलील भी खुद ब खुद आ जाती है, और जहन फिर उसको तस्लीम कर लेता है, यकीन कर लेता है कि हां ऐसा ही है, चार जुफ्त ही है, पांच ताक ही है। तो देखा आपने कि ये छह किस्में हो गई बदीहियात की। कौन कौन सी, अव्वलियात, मुशाहदात, तजरिबियात, हदसियात, मुतवातिरात और फितरियात। अव्वलियात में वास्ते की जरूरत नहीं, और बाकी पांचों में वास्ता होगा। मुशाहदात में वास्ता क्या, हवासे खमसा, जाहिरा या बातिना। तजरिबियात में वास्ता क्या, तजरिबा। और हदसियात में वास्ता क्या हदस है, और मुतवातिरात में वास्ता क्या तवातुर है, और फितरियात में वहां भी वास्ता होता है लेकिन वो वास्ता उस कजिए से जुदा नहीं होता भाई, जुदा नहीं होता। और फिर याद रखना ये अव्वलियात और फितरियात ये तो तकरीबन हर शख्स के हक में यकीनी होते हैं, ये दोनों तो हर शख्स के हक में ये यकीनी होते हैं, ये यकीन का फायदा देते हैं, जहन इनको यकीन, जहन इनको मान लेते हैं, इन पर यकीन कर लेता है, जबकि बाकी मुशाहदात तजरिबियात हदसियात और मुतवातिरात इनमें वो वासिता होगा तो फिर ही कोई इस पर यकीन करेगा, अगर किसी के पास वो वासिता नहीं तो वो यकीन भी नहीं करेगा, उसके लिए यकीनी भी नहीं। जैसे एक शख्स नाबीना है, उसने गुलाब के फूल देखा ही नहीं है कि ये सुरख रंग का होता है, तो उसके लिए अब ये यकीनी नहीं, इल्ला ये कि उसको इतने लोग बता दें कि उसको यकीन हो जाए, तवातुर का वास्ता बीच में आ जाए। या इसी तरह बाज एक दवाई का एक ये फायदा है, तो एक शख्स को एक चीज का तजर्बा ही नहीं है तो वो उसके लिए यकीनियात में से नहीं है। या इसी तरह एक शख्स को हदस नहीं है या कहीं पर तवातुर नहीं है तो वहां उस शख्स को यकीन का फायदा भी नहीं होगा। तो बदीहियात कुल कितने किस्म के, छह किस्म के, कौन कौन से, अव्वलियात, मुशाहदात, तजरिबियात, हदसियात, मुतवातिरात और फितरियात, ये छह हैं भाई। तो ये जो बदीहियात हैं ये यकीनी होते हैं, और जो यकीनी मुकद्दमात से जो कियास मुरक्कब हो उसको कियास बुरहानी कहते हैं। बुरहान का माना होता है दलील, दलील, और चूंकि ये जो कियास बुरहानी है ये यकीन का फायदा देता है, इसलिए ये ही इस लायक है कि इसको दलील कहा जाए, इसलिए इसको बुरहान कहते हैं। बाकियों के नाम और हैं, इसका नाम क्या रखा, बुरहान रखा। बुरहान का क्या माना, दलील भाई, इसी को दलील कहते हैं। बाकियों को दलील क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये यकीन का फायदा देता है, तो यही सबसे ज्यादा इस लायक है कि इसको क्या कहा जाए, दलील कहा जाए भाई, बुरहान कहा जाए। देखिए भाई किताब पर कहते हैं, फसलुन अल कियासु इम्मा बुरहानी यताअल्लफु मिनल यकीनियाति, कि कियास या तो बुरहानी होगा जो मुरक्कब होगा यकीनियात से, व उसूलुहा, उसूलुहा की हाजमीर यकीनियात को राजे, और उसूल यकीनियात जो हैं अल अव्वलियात वल मुशाहदात व तजरिबियात वल हदसियात वल मुतवातिरात वल फितरियात, ये छह हैं भाई। याद रखो यकीनियात तो और भी हैं लेकिन बुनियादी तौर पर यही छह हैं, बुनियादी यही छह हैं, बाकी भी होंगे वो घूम फिर कर इन्हीं में से किसी में दाखिल हो जाएंगे भाई, दाखिल हो जाएंगे। तो ये बुनियादी यकीनियात हैं भाई। आगे देखिए, सुम इनकान अल औसतु मअइल्लियति ही लिनिस्बति फिल ज़हन इल्लतन लहा फिल वाक़िअ फलिमियुन व इल्ला फइन्नियुन। ये बुरहान जो है फिर दो किस्म पर है, या ये बुरहाने लिम्मी कहलाएगा या बुरहाने इन्नी। बुरहाने लिम्मी और बुरहाने इन्नी, याद रखो हम जब दलील बनाते हैं तो कभी कभार इल्लत के जरिए इस्तेदलाल किया जाता है मालूल पर, और कभी मालूल के जरिए इस्तेदलाल किया जाता है इल्लत पर। अगर इल्लत के जरिए इस्तेदलाल किया जाए मालूल पर तो इसको दलीले लिम्मी कहते हैं या बुरहाने लिम्मी कहते हैं, और अगर मालूल के जरिए इस्तेदलाल किया जाए इल्लत पर तो इसको दलीले इन्नी कहते हैं। मसलन देखो, मैं कियास बनाता हूं, इस वक्त सूरज तुलुअ है, इस वक्त सूरज निकला हुआ है, और जब सूरज निकला होता है तो दिन होता है, नतीजा क्या निकला, इस वक्त दिन है, इस वक्त है मौजू। फिर सुनो, इस वक्त क्या है, मौजू, इस वक्त सूरज निकला हुआ है, और जब भी सूरज निकला होता है दिन होता है, नतीजा क्या, इस वक्त दिन है। देखो हमने इल्लत के जरिए इस्तेदलाल किया मालूल पर, किसको साबित किया, दिन को, और किसके जरिए, सूरज के निकलने के जरिए, तो इसको कहते हैं दलीले लिम्मी। इल्लत के जरिए इस्तेदलाल किया जाए किस पर, मालूल पर। फिर सुने, इस वक्त सूरज निकला हुआ है और जब सूरज निकला होता है उस वक्त दिन होता है, तो नतीजा क्या आया? इस वक्त दिन है, नतीजे में क्या आया? इल्लत आई या मालूल? इस वक्त दिन है, दिन का होना इल्लत है या मालूल है? हां भाई, इल्लत वो है जिस पर किसी चीज का वजूद मौकूफ हो। सूरज है तो दिन है, सूरज नहीं तो दिन भी नहीं। तो सूरज का निकलना यह है इल्लत, और दिन का होना यह क्या है? मालूल। तो इल्लत के जरिए अगर मालूल पर इस्तेदलाल किया जाए तो इसको कहते हैं दलीले लिम्मी। तो अब फिर गौर कीजिए, मैं कहता हूं इस वक्त सूरज निकला हुआ है और जब सूरज निकला होता है तो दिन होता है, नतीजा क्या निकला? इस वक्त दिन है। क्या चीज साबित हुई? दिन का होना, यानी मालूल साबित हुआ। और किसके जरिए हुआ? सूरज के निकलने यानी इल्लत के जरिए। तो ये इल्लत के जरिए इस्तेदलाल हुआ किस पर? मालूल पर। इसको क्या कहते हैं? दलीले लिम्मी कहते हैं, दलीले लिम्मी कहते हैं। और अगर इसका बरअक्स हो, मालूल के जरिए इस्तेदलाल किया जाए इल्लत पर, तो उसको दलीले इन्नी कहते हैं। मसलन मैं कहता हूं इस वक्त दिन है और जब भी दिन होता है तो सूरज निकला होता है, नतीजा क्या निकला? इस वक्त सूरज निकला हुआ है। तवज्जो है, नतीजा क्या आया? इस वक्त सूरज निकला हुआ है। और सूरज का निकलना इल्लत है या दिन का होना इल्लत है? सूरज का निकलना इल्लत है। तो देखो नतीजे में इल्लत आ गई, हमने इल्लत को साबित किया किसके जरिए? मालूल यानी दिन के जरिए। तो ये मालूल का के जरिए इस्तेदलाल हुआ इल्लत पर, इसको क्या कहते हैं? दलीले इन्नी कहते हैं। और क्या आपने गौर किया जो मैंने दो कयास बनाए, जिसके जरिए इस्तेदलाल किया जाए उसको हद औसत बनाते हैं। फिर सुनो, इस वक्त सूरज निकला हुआ है, इस वक्त है मौजू और सूरज निकला हुआ है महमूल। अगले कजिए में आओ, और जब भी सूरज निकला होता है दिन होता है, जब भी सूरज निकला होता है ये क्या? मौजू। और दिन होता है ये महमूल। शक्ल अव्वल बन गई, और शक्ल अव्वल में, शक्ल अव्वल में हद औसत सुगरा में कहां आता है? महमूल की जगह, और कुबरा में मौजू की जगह। आप खुद गौर करें, इस वक्त सूरज निकला हुआ है और जब सूरज निकला होता है तो दिन होता है। तो हद औसत क्या है? सूरज का निकलना, और सूरज का निकलना इल्लत है मालूल है? इल्लत है। तो देखो इल्लत के जरिए इस्तेदलाल हो रहा है किस पर? मालूल पर। तो हद औसत अगर इल्लत है और उसके जरिए मालूल को साबित किया जा रहा है तो यह क्या हुई? दलीले लिम्मी हुई। और अगर हद औसत मालूल है और उसके जरिए किसको साबित कर रहे हैं? इल्लत को साबित कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? दलीले इन्नी कहते हैं। तो ये जो हद औसत है, मैंने बताया था कियास का बड़ा कीमती जुज है, इसी के जरिए तो नतीजा आता है। अगर ये ना हो तो नतीजा कैसे आएगा भाई? मसलन नतीजा पहले में क्या आया? इस वक्त दिन है, इस वक्त यह है मौजू, और दिन है यह क्या है? महमूल है। तवज्जो है, यह महमूल है, दिन महमूल है। तो इस वक्त मौजू और दिन महमूल, तो यहां निस्बत ईजाबी है या निस्बत सलबी है? ईजाबी है। इस वक्त दिन है, इस वक्त दिन है। और कभी निस्बत सलबी होती है, मसलन मैं कहता हूं इस वक्त सूरज तुलू नहीं है और जब सूरज तुलू नहीं होता तो दिन नहीं होता, मालूम हुआ इस वक्त दिन नहीं है। तो कौन सी निस्बत आई? सलबी आई भाई, सलबी आई। तो ये जो नतीजा होता है, तवज्जो से सुनो भाई, ये जो नतीजा होता है इसमें निस्बत ईजाबी या निस्बत सलबी जो है वो मतलूब होती है। या तो आपने निस्बत ईजाबी को साबित करना है या निस्बत सलबी को। और ये निस्बत ईजाबी ये निस्बत सलबी किसके वास्ते से आएगी? हद औसत के वास्ते से। भाई देखो नतीजे के अंदर एक है असगर एक है अकबर, नतीजे के मौजू को क्या कहते हैं? असगर, और उसके महमूल को क्या कहते हैं? अकबर। देखो असगर कियास के अंदर, असगर सुगरा में था और अकबर कुबरा में था, ये इन दोनों को नतीजे में जोड़ा और मिलाया किसने? हद औसत ने। तो हद औसत वासिता होता है इस बात के अंदर या इस तस्दीक के अंदर। ये जो नतीजे में तस्दीक हमें हासिल हुई, ये तस्दीक
इसमें वास्ता कौन है? हद औसत। ये जो नतीजे में इस मौजू के लिए यह वाला महमूल साबित हो गया कि इस वक्त दिन है, इस वक्त के लिए क्या साबित हुआ? दिन। तो ये नतीजे के अंदर ये जो निस्बत ईजाबी आई इसमें वास्ता कौन बना? हद औसत। तो उसको क्या कहेंगे? वास्ता फिल तस्दीक, या उसको क्या कहेंगे? वास्ता फिल इस बात के, एक चीज के लिए दूसरी चीज का इस बात। तो यह हद औसत को क्या कहते हैं? वास्ता फिल इस बात भी, और वास्ता फिल तस्दीक भी कहते हैं। फिर सुनो, नतीजे के अंदर निस्बत ईजाबी या निस्बत सलबी होती है और वो मतलूब होती है, और ये जो निस्बत ईजाबी और सलबी जो मतलूब है इस तक हमें पहुंचाता कौन है? वो हद औसत है। तो हद औसत जो है उसको वास्ता फिल इस बात भी कहते हैं। तो वो वास्ता फिल इस बात है और वास्ता फिल तस्दीक है। भाई बात समझ में आ गए? तो नतीजे के अंदर जो निस्बत ईजाबी या सलबी होती है इसके अंदर जो वास्ता होता है, जो जिसकी वजह से असगर के लिए अकबर का सबूत होता है। हालांकि असगर तो कहां था? सुगरा में। अकबर कहां था? कुबरा में। तो ये जो असगर के लिए अकबर का इस्बात हुआ और ये जो तस्दीक हासिल हुई ये किसके वास्ते से हुई? हद औसत के वास्ते से। तो इसलिए हद औसत को वास्ता फिल इस्बात और वास्ता फिल तस्दीक कहते हैं कि इसकी वजह से ये जो नतीजे वाली तस्दीक है हासिल हुई है, ये इसकी वजह से एक चीज का दूसरी चीज के लिए इस्बात हुआ है, या यूं कहें इसकी वजह से ये निस्बत ईजाबी या सलबी का इस्बात हुआ है। तो याद रखो, ये हद औसत जो है अगर इल्लत हो तो यह दलील लिम्मी है, और अगर हद औसत जो है वो मालूल हो तो ये दलील इन्नी है। भाई हासिल कलाम क्या? हद औसत अगर इल्लत हो तो ये दलील लिम्मी है, और अगर हद औसत मालूल हो तो ये दलील इन्नी है। फिर सुनो कयास, इस वक्त सूरज निकला हुआ है, और जब सूरज निकला होता है तो दिन होता है। नतीजा क्या निकला? इस वक्त दिन है, इस वक्त दिन है। तो किसके जरिए, किस पर इस्तिदलाल किया? इल्लत के जरिए मालूल पर। तो देखा, ये जो आपने सुगरा कुबरा मिलाए, इसमें एक चीज को इल्लत बनाया और दूसरे को मालूल। तवज्जो है, एक चीज को इल्लत बनाया और दूसरे को मालूम, और दूसरे को मालूल। अगर वाकई में भी यही चीज इल्लत हो तो इसको दलील लिम्मी कहते हैं, और अगर वाकई में यह चीज इल्लत ना हो तो फिर इसको दलील इन्नी कहते हैं। इस वक्त सूरज निकला हुआ है, और जब सूरज निकला होता है तो दिन होता है। मुझे बताइए कि जहन में किसको इल्लत बनाया? सूरज के निकलने को इल्लत बनाया। किसके लिए? दिन के लिए। और वाकई में भी मुझे बताइए, सूरज का निकलना दिन के लिए इल्लत है? जी वाकई में भी ये इल्लत है। तो इसको दलील लिम्मी कहेंगे। हासिल क्या? कि हद औसत, जैसे जहन में इल्लत है इस निस्बत के लिए, अगर वाकई में भी वो इस निस्बत के लिए इल्लत हो तो ये दलील लिम्मी है। इस वक्त नतीजा क्या आया? इस वक्त दिन है। ये जो निस्बत आई, इस वक्त दिन है, जहन में इसकी इल्लत क्या है? क्योंकि वह हद औसत पे नजर रखो, सूरज का निकलना, तो जहन में इसकी इल्लत क्या है? सूरज का निकलना। तो अगर वाकई में भी ये यही चीज इल्लत हो इस निस्बत के लिए तो इसको क्या कहेंगे? दलीले लिम्मी कहेंगे, वरना इसको दलीले इन्नी कहेंगे। देखो दूसरी मिसाल से बात और वाजे हो जाएगी। मैं कहता हूं इस वक्त दिन है, और जब दिन होता है तो सूरज निकला होता है। नतीजा क्या आया? इस वक्त सूरज निकला हुआ है। इस वक्त जी हद औसत क्या है? दिन। और नतीजा क्या आया? कि इस वक्त सूरज निकला हुआ है। तो देखो, इस वक्त के लिए सूरज का निकलना साबित हुआ। इस वक्त क्या है? सूरज निकला हुआ है। इस वक्त है मौजू, और सूरज निकला हुआ है यह महमूल है। तो इस मौजू के लिए यह वाला महमूल साबित है, यह वाली निस्बत साबित है। और दलील किसको बनाया? हद औसत क्या था? दिन। तो गोया जहन में इस निस्बत की, ये जो आपने कहा इस वक्त सूरज निकला हुआ है, नतीजे पे नजर है, इस वक्त सूरज निकला हुआ है, आपके जहन में यह निस्बत आ गई। यह नतीजा आ गया। और इस निस्बत की इल्लत क्या है जहन में, इस वक्त सूरज निकला हुआ है, इसकी इल्लत क्या है, वजह क्या है जहन में, क्योंकि दिन है। वो जो हद औसत है वो इल्लत है ना, हद औसत क्या है, जहन में इल्लत है, लेकिन क्या वाकई में भी वो इल्लत है? वाकई में वो इल्लत नहीं है। फिर सुनो, इस वक्त दिन है और जब दिन होता है तो सूरज निकला होता है, नतीजा क्या निकला? इस वक्त, इस वक्त के लफ्ज को जोड़ो भाई, इस वक्त, फिर सुनो, इस वक्त है मौजू और दिन है महमूल। फिर अगले मुकदमे में जब दिन होता है यह है मौजू, तो सूरज निकला होता है यह है महमूल जी। फिर सुनो, इस वक्त दिन है और जब दिन होता है तो सूरज निकला होता है, नतीजा क्या? इस वक्त सूरज निकला हुआ है। यह निस्बत आपको हासिल हुई कि इस वक्त सूरज निकला हुआ है, और इस निस्बत के हासिल होने का सबब क्या बना, किसके जरिए यह निस्बत आई? हद औसत के जरिए, और वह हद औसत क्या है? दिन है। क्या है? दिन है। तो यह जो निस्बत आई, इसका सबब और इल्लत क्या है? ये जो निस्बत आई, इस वक्त सूरज निकला हुआ है, इस निस्बत का सबब क्या, कैसे हासिल हुई ये निस्बत, ये नतीजा किसकी वजह से आया? दिन यानी हद औसत की वजह से। तो यहां पर ये जो नतीजे में निस्बत आई, इस निस्बत का सबब और इसकी इल्लत जो है वो हद औसत है, यानी दिन है। यानी तो गोया जहन के अंदर ये जो निस्बत आई नतीजे के अंदर, इस निस्बत की इल्लत क्या है? दिन का होना। और क्या वाकई में भी दिन का होना यह इल्लत है सूरज के लिए निकलने के लिए, या सूरज का निकलना इल्लत है दिन के लिए? तो देखा, जहन में तो जो आपने दलील बनाई, जहन में तो दिन का होना यह इल्लत हुआ किसके लिए? सूरज के निकलने के लिए। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? दलीले इन्नी। और अगर दूसरे पहला मुकदमा क्या था कि इस वक्त सूरज निकला हुआ है, और जब सूरज निकला होता है तो दिन होता है, नतीजा क्या आया? इस वक्त दिन है। देखो ये जो नतीजा आया, इस वक्त दिन है, इस वक्त दिन है, इसके लिए सबब क्या बना, किसके जरिए ये नतीजा हासिल हुआ? हद औसत के जरिए। किसके जरिए? ये जो इस वक्त पर दिन होने का हुक्म आपने लगाया, ये किसके वास्ते से? हद औसत। और हद औसत मालूम हुआ वो सबब बनी इस नतीजे का, इस तक पहुंचाने का, यानी वो इल्लत है इस नतीजे के लिए। तो जहन के अंदर वो इल्लत है इस नतीजे के लिए, तो अगर वाकई में भी ये इल्लत हो इस निस्बत के लिए, तो ये दलील लिम्मी है भाई। बात समझ में आ गई? तो हासिल क्या, नतीजे में निस्बत ईजाबिया या सलबिया होती है, और इस निस्बत के लिए हद औसत इल्लत होती है। और अगर हद औसत वाकई के अंदर भी इसके लिए इल्लत हो तो इसको दलील लिम्मी कहेंगे। अगर हद औसत वाकई के अंदर भी इस निस्बत के लिए क्या हो? इल्लत हो, जैसे जहन में इल्लत है इसी तरह वाकई में भी यही इल्लत है, तो फिर यह दलीले लिम्मी। और अगर वाकई में ऐसा ना हो तो फिर यह दलीले इन्नी है भाई। या दूसरी मिसाल ले लें, जैद का जिस्म गर्म है, और जिसका जिस्म गर्म होता है उसे बुखार होता है, नतीजा क्या निकला? जैद को बुखार है। अब मुझे बताइए, ये जिस्म गर्म होना यह है हद औसत, यह इल्लत है इस नतीजे की जी। यह इल्लत है इस नतीजे की, इल्लत है। तो क्या वाकई में भी जिस्म के गर्म होने से बुखार होता है, या बुखार से जिस्म गर्म होता है? बुखार से जिस्म गर्म होता है। तो जहन में तो इल्लत है जो नतीजा आया कि जैद को बुखार है, तो जहन में इल्लत क्या? जिस्म का गर्म होना इल्लत, और बुखार का होना मालूल कह लें। जहन में क्या? हद औसत इल्लत होती है, जहन में जिस्म का गर्म होना इल्लत है, लेकिन वाकई के अंदर जिस्म का गर्म होना इल्लत नहीं है बल्कि मालूल है। तो ये कौन सी दलील हुई? दलील इन्नी हुई। शाबाश। और मिसाल ले लें, बस आप कहते हैं वहां धुआं उठ रहा है, वहां धुआं उठ रहा है, और जहां धुआं उठे वहां आग होती है। नतीजा क्या निकला? वहां आग है, वहां
आग है।
अब मुझे बताइए नतीजा क्या आया कि वहां आग है, और इस ये जो नतीजा आया इसकी इल्लत क्या है? धुआं है। और मुझे बताइए क्या ये वाकई के अंदर भी धुआं, धुएं की वजह से आग होती है या आग की वजह से धुआं होता है? आग की वजह से धुआं। तो यहां किसके जरिए इस्तेदलाल किया? मालूल के जरिए। किस पर? इल्लत पर। लिहाजा इसको क्या कहेंगे? दलीले इन्नी कहेंगे। और अगर इसके बजाय मैं यूं कहूं कि वो सामने आग जल रही है और जहां आग होती है वहां धुआं होता है, मालूम हुआ वहां धुआं है। रात का वक्त है, धुआं नजर नहीं आ रहा लेकिन सिर्फ आग नजर आ रही है। मैं कहता हूं वहां आग है और जहां आग होती है वहां धुआं होता है। नतीजा क्या निकला? वहां धुआं है। अब बताइए नतीजा क्या आया? वहां धुआं है। और धुएं पर इस्तेदलाल किया गया किसके जरिए? आग के जरिए। तो जहन में इल्लत क्या है? आग और धुएं के लिए। और वाकई में भी आग इल्लत है किसके लिए? धुएं के लिए। तो इसको क्या कहेंगे? दलीले लिम्मी कहेंगे। बात समझ में आ गई जी। अब देखिए भाई कहते हैं सुम इनकान अल औसत मा इल्लियति ही लिन निस्बति फि ज़हनी इल्लतन लहा फिल वाकई फलिमियुन व इल्ला फइन्नियुन। कहते हैं फिर औसत जो है मा इल्लियति ही लिन निस्बति फि ज़हनी, साथ इसके इल्लत होने के, लिन निस्बति निस्बत के लिए, साथ इसके या बावजूद कर लें, बावजूद इसके कि यह इल्लत हो निस्बत के लिए जहन में, जहन में निस्बत के लिए इल्लत होने के साथ साथ इल्लतन लहा फिल वाकई, वाकई में भी उसके लिए इल्लत हो, तो फलिमियुन। तो यह दलील क्या है? यह बुरहान क्या है? बुरहान लिमी है। तवज्जो है, इबारत समझ में आ गई? व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, फइन्नियुन, तो फिर यह बुरहान इन्नी है। फिर सुनो तर्जमा, सुम इनकान अल औसत मा इल्लियति ही लिन निस्बति फि ज़हनी, फिर औसत जो है वो जहन में निस्बत के लिए इल्लत होने के साथ साथ इल्लतन लहा फिल वाकई, वो उस निस्बत के लिए इल्लत हो वाकई के अंदर भी, फलिमियुन, तो फिर वो दलीले लिम्मी है। व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, फइन्नियुन, तो फिर वो दलीले इन्नी है। आसान लफ्जों में यूं कहो अगर इल्लत के जरिए मालूल पर इस्तेदलाल किया जाए तो यह है दलीले लिम्मी, और अगर मालूल के जरिए इल्लत पर इस्तेदलाल किया जाए तो यह है दलीले इन्नी है। सूरज के निकलने के जरिए दिन को साबित करें आप तो यह है दलीले लिम्मी, और दिन के जरिए अगर सूरज को आप साबित करें तो यह है दलीले इन्नी है। आग के जरिए धुआं साबित करें तो यह दलीले लिम्मी है। धुएं के जरिए आग को साबित करें तो यह दलीले इन्नी है। बुखार के जरिए जिस्म की गर्मी को साबित करें तो यह दलीले लिम्मी है, और अगर जिस्म की गर्मी के जरिए बुखार को साबित करें तो यह दलीले इन्नी है। तो यह मालूम हुआ दलीले लिम्मी और इन्नी, इसमें हद औसत जो है जो वासिता बन रहा है वो अगर इल्लत है तो उसको दलीले लिम्मी कहेंगे, और अगर वो मालूल है तो उसको दलीले इन्नी कहेंगे। और एक और बात याद रखना, कियास इस्तिस्नाई के अंदर जो दूसरा छोटा मुकद्दमा, पहला मुकद्दमा तो शर्तिया होगा और दूसरा कजियाए हमलिया होगा जिसका इस्तिस्ना किया जा रहा है, तो अगर मुकद्दमा इस्तिस्नाइया यानी वो जो छोटा मुकद्दमा है कजियाए हमलिया, वो हद औसत के दर्जे में होता है। किसके दर्जे में? हद औसत के दर्जे में है। तो अगर उसमें इल्लत का जिक्र हो तो यह दलील कौन सी होगी? लिम्मी। और अगर उसमें मालूल का जिक्र हो तो वह दलील कौन सी होगी? तवज्जो है, कियास इस्तिस्नाई में जो दूसरा मुकद्दमा है वह किसके दर्जे में है, किसके हुक्म में है? हद औसत। जब वह हद औसत के हुक्म में है तो अगर उसमें किसका जिक्र हो? इल्लत का जिक्र हो, तो मालूम हुआ इल्लत के जरिए किस पे इस्तिदलाल किया जा रहा है? मालूल पर। तो यह दलीले लिम्मी हुई, और अगर उसके अंदर मालूल का जिक्र है तो मालूम हुआ मालूल के जरिए किस पर इस्तिदलाल किया जा रहा है? इल्लत पर। तो इसको दलीले इन्नी कहेंगे। दलीले लिम्मी इसको इसलिए कहते हैं, लिम्मुन, लिम्मुन का माना है इल्लत, लिम्मुन का क्या माना? इल्लत है। और इन्नुन का माना है वजूद। भाई ये उसी इन्ना हर हरूफ मुशब्बा बिल फेल जो है इन्ना उससे, लिमुन लीमा से, लीमा के जरिए सवाल होता है लीमा क्यों है ऐसा, दिन है मसलन कोई पूछता है लीमा दिन क्यों है तो आप क्या कहते हैं सूरज निकला हुआ है, तो लीमा के जरिए सवाल किया जाता है, किसी चीज की इल्लत बयान की जाती है। मैंने आपसे पूछा दिन क्यों है, आप मुझे उसकी इल्लत बतलाते हैं क्योंकि सूरज निकला हुआ है, तो लीमा के जरिए किसको किसके बारे में पूछा जाता है इल्लत के बारे में, तो यहां लिमुन जो है उसी इल्लत के माने में इस्तेमाल हुआ, दलीलुन लिमियुन, ये लिमुन किससे बना लीमा से, लीमा से, और दलील इन्नी ये किससे बनी इन्ना से, हर फज हरूफ मुशब्बा बिल फेल, और इन्ना किस लिए आता है यकीन के लिए, क्या इन्ना जैदन कायमन यकीनन जैद खड़ा है, तो यानी ये सबूत और वजूद पर दलालत करता है, इन्ना किस पर दलालत करता है सबूत और वजूद, तो इनका माना भी यहां सबूत और वजूद के हैं, दलील इन्नी जिसमें एक चीज के सबूत और वजूद पर दलील बनाई जाती है, इल्लत नहीं होती सिर्फ एक चीज के वजूद को साबित किया जाता है कि ऐसा है, जबकि दलील लिमी में उसमें लिमुन यानी इल्लत के जरिए इस्तेदलाल किया जाता है, बात समझ में आ गई, तो लिमा के जरिए इल्लत के बारे में सवाल किया जाता है, तो वो दलील जो एक चीज के इल्लत होने पर दलालत करे वाकए के अंदर उसको दलील लिम्मी कहते हैं, दलील लिम्मी के अंदर हद औसत वो इल्लत होती है, तो जहन में भी वो इल्लत और वाकए में भी इल्लत, तो ये दलील एक चीज के इल्लत होने पर दलालत कर रही है, ये दलील हमें बतला रही है कि सूरज के निकलने की वजह से दिन होता है, सूरज इल्लत है और दिन का निकलना मालूल है, इसको क्या कहते हैं दलीले लिम्मी भाई, क्योंकि ये इल्लत पर दलालत कर रही है। और दूसरी दलील जो है उसको दलीले इन्नी कहते हैं, इन नुन जो है ये वही हर्फ मुशब्बा बिलफेल है इन्ना, और इन्ना जैदन काइमुन क्या माना, यकीनन जैद खड़ा है, बेशक जैद खड़ा है, तो ये जो इन्ना है ये वजूद और सबूत पर दलालत करता है, तो ये जो दलील इन्नी है ये भी सिर्फ जहन में एक चीज के सबूत पर दलालत करती है, उसके इल्लत होने पर दलालत नहीं करती, मसलन दिन है तो सूरज निकला हुआ है, तो देखो जहन में दिन जो है वो इल्लत है और सूरज का निकलना मालूल है, वाकई में ऐसा नहीं है, इसलिए इसको दलील इन्नी कहते हैं, ये एक चीज के सबूत फिर जहन पर दलालत कर रही है, यानी जहन में सिर्फ इल्लत होने पर दलालत कर रही है, वाकई में इल्लत होने पर दलालत, इसको दलील इन्नी कहते हैं, ये जहन में एक चीज के सबूत पर दलालत करती है कि ये चीज जहन में है, यानी जहन में उसके लिए सबब और इल्लत है, वाकई में सबब और इल्लत नहीं है। चलिए बस करें भाई, हासिल कलाम ये कि आज हमने कियास के मादे के बारे में पढ़ना शुरू किया और मैंने आपको बतलाया कि कियास के मादे से मुराद कियास के वो मुकदमात हैं जिनसे कियास मुरक्कब हो गई, और ये मुकदमात जितने कवी होंगे आपका कियास भी उतना ही मजबूत होगा, तो अगर कियास के मुकदमात यकीनी हो तो वो सबसे कवी दलील है, और ये फिर आगे जो नतीजा आता है वो भी यकीनी होता है, और इसको बुरहान कहते हैं, और बुरहान इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बुरहान का माना है दलील, तो दलील के चूंकि ये यकीन का फायदा देती है तो यही हकीकत में दलील कहलाने के लायक है, बाकी भी दलीलें हैं लेकिन हकीकत में यही दलील कहलाने के लायक है, इसलिए इसका नाम बुरहान रखा, तो बुरहान वो कियास है जो यकीनियात से मुरक्कब हो, और यकीनियात जो है वो छह किस्म के बदीहियात हैं भाई, छह किस्म के बदीहियात, और कौन कौन से, अव्वलियात, मुशाहदात, तजरिबियात, हदसियात, मुतवातिरात और फितरियात, ये आपको हर वक्त जुबानी याद होने चाहिए, तो अव्वलियात जो है उसमें जहन सिर्फ जो है तरफेन का और निस्बत का तसव्वुर करता है और उसको यकीन हो जाता है, उसका एतिकाद कर लेता है, उसको मान लेता है कि बात ऐसी ही है, जबकि बाकी जितने हैं उनमें वास्ते की जरूरत होती है, अगर वो वास्ता जो है वो हवासे खमसा जाहिरा या बातिना हो तो उसका नाम
तो उन कजाया का नाम मुशाहदात है। जैसे आप जानते हैं कि गुलाब सुर्ख रंग का है, यह चीज इस तरह की होती है, यह चीज इस तरह की होती है, ये जो जो चीजें आपने आंखों से देखी हैं, कानों से सुनी हैं, नाक से सूंघी हैं, ये सारी मुशाहदात में दाखिल हैं आपके। और इसी तरह अगर वासिता जो है वो तजर्बा हो, कई दफा तजर्बात के बाद एक चीज साबित हो, जहन उसका यकीन कर लेता है, तो उस ये तजरीबियात के कबील से है। और अगर वास्ता जो है हद्स हो, यानी हद्स किसे कहते हैं कि जहन आनन फानन मबादी से कहां तक पहुंच जाए, नतीजे तक जरा भी ना सोचना पड़े, तो अगर वास्ता हद्स हो तो इसको तो इनको हदसियात कहते हैं। और अगर वास्ता जो है वो तवातुर हो, यानी इतने लोगों का एक खबर देना कि अकल उनके इज्तिमा अलल कज़िब को महाल समझे, तो ये मुतवातिरात के कबील से है। और अगर वो वास्ता जो है वो दलील जो होती है जो साथ ही उस कजिए के जहन में आ जाती है, तो इसको फितरियात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फितरियात में कजिए के साथ ही वो दलील भी जहन में आ जाती है, सोचना नहीं पड़ता। और इनको क्या कहते हैं? कजाया कियासातुहा माहा, ये ऐसे कजिए हैं जिनके कियास उनके साथ ही होते हैं। और उसके बाद फिर आपने दलील लिम्मी और इन्नी के बारे में भी पढ़ा। दलील लिम्मी में इल्लत के जरिए मालूल पर इस्तेदलाल किया जाता है, और दलील इन्नी में मालूल के जरिए इल्लत पर इस्तेदलाल किया जाता है। और इसमें मैंने बतलाया था हद औसत पर आपने गौर करना है। हद औसत जो है यह वासिता फिल इस बात होती है, या वासिता फिल तस्दीक होती है नतीजे के अंदर। तो अगर यह वास्ता हद औसत जो है, इस ये इल्लत है हकीकत में और वाकई में भी, तो इसको दलील लिम्मी कहेंगे। और अगर हद औसत वाकई और हकीकत के अंदर यह इल्लत नहीं खुद मालूल है और इसके लिए इल्लत पर इस्तेदलाल किया गया है, तो इसको दलील इन्नी कहेंगे। चलिए बस, बेहदा हुआ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।